हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। इधर कट रहा है के ऊपर से देखो फिर। ऐसा है ये जो हरे कृष्णा। बड़ी प्रसन्नता आप सबको देखकर। ऐसा लग रहा है आप सबके साथ बैठे हैं उदयपुर में, मदन गोविंद प्रभु के घर में बैठे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा घर का वातावरण दिख रहा है बड़ा अच्छी तरह से। ऑल्टर नहीं दिख रहा है मदन गोविंद प्रभु का, अगर ऑल्टर के दर्शन होते तो भी अच्छा था, तो कम से कम बीतीस के दर्शन हो जाते हैं। जाए, हमें पता साइड में है इसीलिए हमने कहा। और वैसे जगन्नाथ जी के तो दर्शन होंगे नहीं मंदिर में, क्योंकि इस समय बंद होगा, 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ हो रहे हैं, जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे हैं कृपा करके। हमने सोचा था 1 बजे से पहले प्रयास करें आने का, ताकि दर्शन कर सके जगन्नाथ जी के, लेकिन इच्छा नहीं थी शायद जगन्नाथ जी की। तो धन्यवाद मदन गोविंद प्रभु दर्शन कराने के लिए। और हम जानते हैं कि काफी डिवोटीज के घर में डीटीज होंगे, और इस क्लास के बाद जिन जिन के घर में डीटीज हैं, हमारी इच्छा है कि यहाँ से हम उनके दर्शन कर सकें, आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो आप सबसे विनती है कि जब ये क्लास समाप्त हो तो थोड़ा सा आपका जिन जिन के डीटीज हैं डीटीज के दर्शन करा देंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। तो आदेश हुआ कि कुछ जगन्नाथ जी के विषय में कहना चाहिए, और हम सोच रहे थे कि अभी आपने सुबह से सुना होगा जगन्नाथ जी के विषय में। और जगन्नाथ जी को, वैसे तो जगन्नाथ हैं दुनिया भर के, पूरे ब्रह्मांड के नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, सभी प्रिय हैं, लेकिन उनमें से भी भारत के लोग बहुत प्रिय हैं जगन्नाथ जी को। और भारत के लोगों में से भी उड़ीसा के लोग तो बहुत ही प्रिय हैं। और फिर जब वो कथा कहें जगन्नाथ जी के विषय में, जैसे अभी आपने शास्त्र स्वरूप प्रभु से सुना होगा, मायापुरवासी प्रभु से सुनते रहते हैं, तो जगन्नाथ जी अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उड़ीसा के लोग हृदय से कथा करते हैं, और हमारे जैसे लोग कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का सुनकर फिर कुछ कह देते हैं। तो इसलिए ना हमें आनंद आता है ना आप सबको आनंद आता है, फिर भी प्रयास करते हैं सेवा करने की। जगन्नाथ जी जिनको हम मंदिर में दर्शन करते हैं, इस्कॉन में आने से पहले हमने जगन्नाथ जी के विषय में सुना नहीं था, और हमें आशा है कि आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जगन्नाथ जी को के विषय में सुना देखा नहीं होगा, और जब देखा भी तो बड़ा विचित्र लगा होगा, ये क्या रूप है, कुछ है ही नहीं, पूरे चेहरे पर बड़ी बड़ी गोल आंखें दिखती हैं और कुछ है नहीं, और ये लोग उसको पूछते हैं। तो जगन्नाथ जी ये का प्राकट्य कब हुआ, वैसे प्राकट्य के विषय में तो आप सुबह सुन चुके हैं, हमने सोचा वर्णन करें जगन्नाथ जी का प्राकट्य कब हुआ, और जगन्नाथ जी के बारे में पुराणों में क्या कहा गया है, जैसे स्कंद पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, जगन्नाथ जी के बारे में भरा हुआ है, काफी चीजें कही गई हैं, और साथ ही साथ वर्णन करें कि जगन्नाथ जी का महत्व क्या है, जगन्नाथ जी के भक्तों का महत्व क्या है, और कुछ थोड़ा बहुत जगन्नाथ जी की लीलाएं जो उन्होंने भक्तों के साथ की, इसको आपसे शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो जगन्नाथ जी का प्राकट्य कब हुआ, अलग अलग लोग धारणाएं करते हैं, कोई कहते हैं अभी कलयुग में हुआ, और फिर कहते हैं स्वाभाविक है कलयुग में होगा, क्योंकि कृष्ण आए उसके बाद तो जगन्नाथ होंगे, वही कृष्ण जगन्नाथ में बदले थे, हम लोग कथा सुन चुके हैं, रोहिणी देवी ने जब कथा कहनी शुरू की, या आप सुन चुके होंगे सुभद्रा ने रोक लिया था दरवाजा, या फिर अन्य कथा जहां नारद मुनि ने भगवान के इस रूप को देखा और प्रार्थना की कि आप प्रकट हों। ऐसे कई भगवान के प्राकट्य के लिए शास्त्रों में करीब 3 प्रमुख कथाएं दी गई हैं अलग अलग, आप सबने उनको सुना होगा। तो इससे तो प्रतीत होता है कि जगन्नाथ जी कलयुग में प्रकट हुए भगवान कृष्ण के जाने के बाद। लेकिन पुराण क्या कहते हैं? स्कंद पुराण में लिखा है कि जगन्नाथ जी का ये रूप स्वयंभू मनु के समय प्रकट हुआ। तो अगर हम इसका थोड़ा बहुत अंदाजा लगाने का प्रयास करें कि कितने साल पहले, तो हमें पता चलेगा कि जगन्नाथ जी कम से कम 15,34,00,000 साल पहले प्रकट हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि जगन्नाथ जी अभी अभी प्रकट हुए हैं, इसीलिए नए नए भगवान हैं कोई जानता नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार करोड़ों साल पहले, कम से कम 15-16 करोड़ साल पहले जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था। और जगन्नाथ जी को तो कैसे हम माने? कोई प्रश्न कर सकते हैं कि अरे कृष्ण भी 5,000 साल पहले आए, और जगन्नाथ जो कृष्ण से जगन्नाथ बने हैं तो वो तो उनके बाद होने चाहिए, पहले कैसे आ गए? तो ये जान लीजिए कि जगन्नाथ जी कई कई बार आ चुके हैं, कृष्ण कई बार आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल अभी आए हैं, प्रकट हुए हैं और पहले नहीं, कृष्ण कई बार आ चुके हैं। इसलिए ये मानना कि जगन्नाथ जी नहीं प्रकट हो सकते करोड़ों साल पहले सही नहीं। तो ये देखिए कि जिनको हम अब भगवान के रूप में पूजा कर रहे हैं, जिनको हम जानते भी नहीं थे जिस रूप को, हाँ वैसे वो प्रसिद्ध थे उड़ीसा बंगाल और अन्य कई जगहों पर। तो हम लोगों ने जब जानने का प्रयास किया तो किस प्रकार जाना? श्रील प्रभुपाद की कृपा से। श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा प्रारंभ कराई दुनिया के अलग अलग देशों में। बहुत सुंदर प्रसंग था कि जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे, तो एक समय उनको प्रसन्न करने के लिए उनके एक शिष्य गए थे। उन्होंने देखा कुछ इंडियन स्टोर है जहां इंडियन चीजें मिलती हैं, तो कुछ ले जाएं जिससे हमारे स्वामी जी प्रसन्न हो जाएं। तो ढूंढने लगे क्या ले जाएं क्या ले जाएं, तो उनको ये डॉल्स गुड़िया दिखाई दी। उनको लगा ये गुड़ियाएं हैं, तो उन्होंने देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। अब उनको पता तो था नहीं कि तीनों साथ में रहते हैं, तो उन्होंने एक ले लिया, जगन्नाथ जी को ले लिया और कहा कि जाके हम स्वामी जी को उपहार में देंगे, स्वामी जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आए, उन्होंने प्रभुपाद के सामने खोला ऐसे और दिया कि देखिए आपके लिए हम डॉल लेकर आए हैं, गुड़िया लाए हैं। और जैसे ही प्रभुपाद ने देखा, अमेरिका में थे प्रभुपाद, जैसे ही प्रभुपाद ने देखा तुरंत उतर के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो वो भक्त आश्चर्य हो गए, क्या हुआ? मतलब उसको समझ में ही आया कि अरे ये प्रभुपाद को क्या हुआ। प्रभुपाद ने कहा जगन्नाथ, जगन्नाथ आए हैं। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए, और इसीलिए उन्होंने रथ यात्रा प्रारंभ की कि जगन्नाथ की इच्छा है, इसीलिए वो प्रकट हुए। फिर प्रभुपाद ने उनसे कहा कि और भी 2 होंगे साथ में? तो उन्होंने कहा हाँ थे, वो तो हम वहीं छोड़ आए। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो भी लेकर आओ, वो भी लेकर आओ। ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस्कॉन में आए पहली बार, और श्रील प्रभुपाद ने फिर बहुत विस्तार से उनके कथाओं को उनके, और प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी, वर्णन है कि बचपन से श्रील प्रभुपाद कामना किया करते थे कि कब मैं जगन्नाथपुरी जा सकूंगा। वो सुनते थे केवल जगन्नाथपुरी के विषय, कभी जा नहीं पाए। तो बहुत बाद में गए जब युवा हो चुके थे, लेकिन बचपन से सुना करते थे जगन्नाथपुरी बहुत बड़ी रथ यात्रा होती है, बहुत बड़ी सड़क है, ग्रैंड रोड। लेकिन प्रभुपाद हमेशा केवल कल्पना, कभी कभी तो जाने की भी इच्छा की, टिकट भी लिया, जा नहीं पाए। और जब छोटे थे प्रभुपाद, तो उस समय उन्होंने जिद की थी अपने पिताजी से कि मुझे रथ यात्रा करनी है। और ये सब हम जानते हैं कि प्रभुपाद ने फिर कैसे, प्रभुपाद के पिता गए लेकर उनको रथ दिलाने के लिए, चलिए मार्केट में लेकर गए, और बड़ा महंगा था, थे नहीं पैसे उतने उनके पास। तो वापस आ गए, प्रभुपाद रो रहे हैं, रास्ते भर रो रहे हैं, मुझे रथ चाहिए, मुझे रथ चाहिए। और उनके पास उतने पैसे नहीं है। तो फिर जब वापस आ रहे थे तो एक महिला बीच में आई, पूछे क्यों बच्चा रो रहा है आपका इतना। प्रभुपाद ने कहा क्या करें, इतना वो रथ मांग रहा है रथ यात्रा के लिए, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। उस महिला ने कहा अरे मेरे घर में पुराना रथ पड़ा है, आप आकर उसको क्यों नहीं ले जाते, उसी में कर लो। देखिए जब इच्छा करते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, तो कैसे भगवान उसको पूरा करते हैं। तो उन्होंने केवल इच्छा मात्र की, प्रभुपाद ने रथ यात्रा करनी है, पिताजी दिला नहीं पाए, तो महिला सामने से आई, फिर उनके घर गए, पुराना रथ था उसको लाए, ठीक किया और प्रभुपाद ने रथ यात्रा की, बड़े प्रसन्न हुए। इसे कहते हैं प्रेम। जो भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, क्या इच्छा थी, एक छोटे बच्चे की इच्छा है कि मैं रथ यात्रा करना चाहता हूं, लेकिन वो छोटा बच्चा एक शुद्ध भक्त है और इसीलिए भगवान उस छोटी इच्छा को भी पूरा करने का प्रयास कर, ये प्रेम है भगवान का। हम लोग छोटे बच्चों की इच्छाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बच्चे रोते रहते ये चाहिए वो चाहिए, हम लोग छोड़ देते हैं। कभी कभी कोई दूसरा पूछता है बच्चा क्यों रो रहा है, तो फिर माता पिता कहते अरे रोने दीजिए चुप हो जाएगा, आप चिंता मत करो। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान ने देखा कि प्रभुपाद रो रहे हैं और किस लिए रो रहे हैं। देखिए इस केवल छोटे से प्रसंग में कितने महत्वपूर्ण संदेश हैं। प्रभुपाद रो किस लिए रहे हैं, कृष्ण की सेवा के लिए। प्रभुपाद कोई चिप्स के पैकेट के लिए नहीं रो रहे थे, प्रभुपाद कोई खिलौना खरीदने के लिए नहीं रो रहे थे, प्रभुपाद भगवान की सेवा के लिए रो रहे हैं। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और भगवान आतुर हैं उनकी उस छोटी सी सेवा, बस उन्होंने कह दिया मुझे रथ चाहिए, भगवान ने भेज दिया। कैसे हो सकता है, आप सोचिए, आश्चर्य की बात है, सड़क पर चलते हुए कोई आकर कहे अच्छा क्यों रो रहा है, आओ मेरे घर में रथ है ले। फिर प्रभुपाद ने 9 दिन तक रथ यात्रा की, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, हम लोग उदयपुर में तो एक दिन कर कर थक जाते हैं और उसके लिए कई 2 महीना तैयारी करते हैं और फिर एक दिन बाद थक इतना जाते हैं कि हफ्ते भर तक मंदिर नहीं आते हैं। प्रभुपाद ने 9 दिन तक रथ यात्रा की प्रभुपाद ने वहां पर, और क्या किया, वो ऐसे घुमाते थे और जितने वहां पर आस पड़ोस के लोग थे उनको बोलते थे भोग बनाओ, तो सब भोग बना रहे थे, सबको सेवा में लगाया प्रभुपाद ने। उस समय से दिखला रहे थे उनके आंदोलन को प्रभुपाद, कि क्या आंदोलन है उनका। उन्होंने इसलिए नहीं रथ यात्रा करनी थी कि केवल खुद के आनंद के लिए, सबको सेवा में लगाना था। तो आसपास के सारे लोग भोग बना रहे हैं, रोज भोग आ रहा है, अच्छा अच्छा 9 दिन तक रथ यात्रा चल रही है। तो जगन्नाथ जी से प्रेम प्रभुपाद को बहुत था और जब पहली बार उनको अवसर मिला जगन्नाथपुरी जाने का, प्रभुपाद इतने प्रसन्न थे कि पहली बार जो बचपन से केवल कल्पना कर रहे थे कि जाएंगे क्या होगा कैसा होगा, प्रभुपाद ने पहली बार देखा जगन्नाथपुरी। तो ऐसा प्रेम भक्तों का और भगवान के बीच होना, ये जीवन की सफलता है। अन्य सारी चीजें हमें जीवन में मिल जाएं, मिल भी जाती हैं अपने अपने कर्मों से, लेकिन वो आनंद नहीं देती, वो प्रेम नहीं देती है, वो संतुष्टि नहीं देती। और इसीलिए जगन्नाथ जी, ये जो इनका रूप है, ये प्रेम के स्वरूप हैं जगन्नाथ। क्यों प्रेम के स्वरूप हैं, इनकी उदारता देखिए, इनका प्रेम देखिए। ऐसे तो केवल इनके प्रेम के विषय में कहते जाएंगे तो बहुत कुछ है, एक दो लक्षण आपको बताते हैं जगन्नाथ जी के प्रेम के। पहला लक्षण है कि जगन्नाथ जी खुद बाहर आते, ये कहीं नहीं होता, किसी मंदिर में नहीं होता भगवान बाहर आए, उत्सव मूर्तियां बाहर आती हैं, लेकिन यहाँ भगवान बाहर आ रहे हैं। क्यों आते हैं, जब हम सब बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, थोड़े से बीमार हैं दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है अच्छे दवाई ले लो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब आप बहुत बीमार होते हो तो डॉक्टर को आपके पास आना पड़ता है, स्थिति नहीं है, आजकल तो लोग एम्बुलेंस में डालकर ले जाते हैं, पहले तो डॉक्टर घर में आया करते थे, ऐसा होता था, हमें भी ध्यान है बचपन में हम जब बहुत बीमार हुए थे एक बार तो डॉक्टर आए थे घर पर और हमें वो डॉक्टर बहुत पसंद आए थे, क्योंकि उन्होंने हमारे माता पिता से कहा था इसको बड़ा बुखार है और इसको कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, हमको तो बड़े अच्छा डॉक्टर लग रहा था कि ऐसा डॉक्टर सबके पास होना चाहिए कि जो बीमारी में कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। तो जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर को लाया जाता है कि हिलने की भी स्थिति नहीं आई है, देखिए क्या है। जब जगन्नाथ जी देखते हैं कि ये लोग थोड़े से बीमार हैं, मंदिर में दर्शन के लिए आ जाते हैं। जब देखते हैं कि भौतिक दृष्टि से इनका कुछ नहीं हो सकता, गॉन केस एकदम, भगवान खुद ही बाहर आते कि मुझे जाना पड़ेगा, अब तो इनका कोई उद्धार नहीं कर सकता। तो ये प्रेम है कि अगर आप नहीं आ रहे तो मैं आता हूं। और यही प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया। चैतन्य महाप्रभु भिक्षुक बने, जगन्नाथ जी अपना घर छोड़कर, महल छोड़कर, मंदिर छोड़कर बाहर आ रहे हैं सड़कों पर, इसलिए प्रेम दर्शाने। और वही प्रेम दर्शाया चैतन्य महाप्रभु ने एक भिक्षुक बनकर। और केवल वे भिक्षुक नहीं बने, उन्होंने आदेश दिया अपने सभी अनुयायियों को। और यह आदेश हम सबके लिए भी है। महाप्रभु ने कहा, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। आज्ञा दी है महाप्रभु ने, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, अमर आज्ञा सर्वत्र कर प्रकाश। ये आज्ञा हम सबके लिए है। हम सबको ऐसा भिक्षुक बनना चाहिए जो घर घर जाकर, ये विशेष भिक्षुक हैं जो मांगते नहीं है, देते हैं, कृष्ण को देते हैं। केवल इतना कहते हैं, करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ऐसे विशेष, ऐसे उदार, ऐसे महान भिक्षुक, कभी भिक्षुकों को महान नहीं कहा जाता, भिखारियों को नीच दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन महाप्रभु आए, भिक्षुक बने, और उन्होंने भिक्षुकों को महान बना दिया। ऐसे भिक्षुक बनो जिनके पीछे लोग भागे। कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पारो, तुमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। ऐसे भिक्षुक बनना चाहिए। तो भिक्षुकों को महान बना दिया महाप्रभु ने, क्योंकि वो खुद भिक्षुक बने। तो ये जगन्नाथ जी की उदारता का एक प्राकट्य कि वो खुद बाहर आते हैं और हम सबको कृपा देते हैं। उनकी दूसरी, ऐसे हमने कहा कि उनके प्रेम के लिए बताते जाएं तो पूरा दिन आज का, आज की हमारी जो एकादशी है पूरी उसी में चली जाएगी। जगन्नाथ जी का दूसरा प्राकट्य प्रेम का, वो कभी सोते नहीं है। जगन्नाथ जी सोते नहीं हैं, ये जान लीजिए। तो मन में आता है कि अरे नहीं, वो दर्शन बंद हो जाते हैं, उनके बेड लगाए जाते हैं। हमने देखा है, हमने भी खुद देखा है, भगवान के बड़े, जगन्नाथ जी के चांदी के बड़े बड़े बेड हैं, वो सोते कैसे नहीं है। पहली चीज, जगन्नाथ जी जो मंदिर के दर्शन जो है, दरवाजे जो है, केवल 2 से 3 घंटे के लिए बंद होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अर्थात वो सबको देते रहते हैं दर्शन, 20 घंटे 21 घंटे 22 घंटे दर्शन चलता रहता है। और ये सत्य है, आप रात को 10 बजे पहुंच जाइए दर्शन हो रहा है, 11 बजे पहुंच जाइए दर्शन हो रहा है, 2 से 3 घंटे बंद होते हैं। तो चलिए फिर लोग कहेंगे कि हाँ, फिर 2-3 घंटे तो सोते हैं ना, क्योंकि साधारणता माना जाता है कि जब भगवान के पट बंद हों तो भगवान सो रहे हैं या खा रहे हैं। इसीलिए जब भगवान के किसी भी मंदिर में भगवान के पट बंद हों तो प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए, ये जानते हुए कि भगवान इस समय आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, या फिर भोजन कर रहे, प्रसाद ले रहे, भोग ले रहे हैं। तो इसलिए हमें प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए जब पट बंद हो, दंडवत नहीं करना चाहिए जब पट बंद हो। भगवान के बंद हो पर तो दंडवत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए वो भोग स्वीकार कर रहे हैं तो उनको रोक कर देखना पड़ेगा, अरे कौन आया है दंडवत कर रहा है। हम बाधा नहीं बनना चाहते भगवान के लिए, इसीलिए प्रणाम नहीं करते हैं। या फिर अगर वो विश्राम कर रहे हैं और अगर कोई दंडवत करे, क्योंकि नियम है कि दंडवत करें तो उसको स्वीकार करना पड़ता है भगवान को, उनको उठना पड़ेगा देखने के लिए, के लिए प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। तो क्या होता है उन 3 घंटों में, जगन्नाथ जी सोते हैं, पुजारी सब चले जाते हैं, क्या होता है? पुजारी चले जाते हैं, पृथ्वी पे मनुष्यों के दर्शन बंद हो जाते हैं, और फिर देवता आते हैं और देवताओं को भगवान 2-3 घंटा दर्शन देते हैं, क्योंकि देवता लाइन में खड़े नहीं हो सकते, थोड़ा उनको अहंकार है कि कैसे हम इनके साथ लाइन में खड़े होकर दर्शन हो। तो उनके लिए स्पेशल दर्शन है भगवान का, जगन्नाथ जी का VIP टिकट लेकर आते हैं वो लोग। कब आते हैं? वो रात को जब जब सब बंद हो जाता है तब देवता आते हैं और 2-3 घंटा भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं चलो ठीक है बहुत हो गया, जाओ आप लोग, अब थोड़ा सा सोता हूं, तब तक पुजारी अंदर आ जाते हैं, समय हो गया। तो जगन्नाथ जी सोते ही नहीं है, और इसीलिए उनकी क्यों नहीं सोते, दूसरा कारण उनकी आंखों के ऊपर वो आईलिड्स नहीं है ना, सोएंगे कहां से, बंद कैसे होंगी आंखें? सरल है ये तो, हम लोग प्रमाण देख सकते हैं कि वो नहीं सो रहे हैं। हम लोग सोते हैं तो आंखें खोलकर सो सकते हैं, आप में से कोई, शायद कोई महारथी होंगे आप में से कि जो आंखें खोलकर सो जाते हैं। वैसे साधारणता जब सोना है तो आंखें बंद होती हैं, आईलिड्स चाहिए, है ही नहीं जगन्नाथ जी के, इसलिए सोते ही नहीं। ये प्रेम है उनका, प्रेम का प्राकट्य। जगन्नाथ जी किस तरह से अपना प्रेम दर्शाते हैं ये हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी सेवा, अपनी पूजा करने का अधिकार किसको दिया? शबरों को। कौन है वो? अगर वर्णाश्रम की दृष्टि से देखा जाए तो चारों वर्णों के बाहर है, समाज की दृष्टि से देखा जाए तो बड़े निम्न अवस्था में माने जाते हैं। उनको जगन्नाथ जी ने कहा सेवा का अधिकार दिया, सेवा करो। देखिए उनकी महानता, उनकी उदारता और उनका प्रेम कृष्ण का, जगन्नाथ जी ने उनको दिया। और फिर और अगर उनका देखा जाए तो जगन्नाथ जी जैसे बाहर आते हैं, नाम ही जगन्नाथ है, सभी के नाथ है, किसी को छोड़ते नहीं है। और यही दिखलाने के लिए वो लॉस एंजलिस में रथ यात्रा होती है, न्यूयॉर्क में रथ यात्रा होती है, जर्मनी में रथ यात्रा होती है, रशिया में रथ यात्रा होती है, जहां देखिए वहां है भगवान दिखला रहे जगन्नाथ। तो ऐसे ये जगन्नाथ जी हैं जो स्वयं भूमनु के समय स्कंद पुराण के अनुसार 15 करोड़ साल से भी पहले प्रकट हुए हैं। और कब प्रकट हुए? स्नान यात्रा के दिन, जो अब 2 दिन बाद है, 5 तारीख को स्नान यात्रा है, तो स्नान यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए। उनका बर्थडे है, रथ यात्रा उनका बर्थडे नहीं है, जगन्नाथ जी का बर्थडे मनाया जाता है स्नान यात्रा पर। तो उस दिन वो प्रकट हुए। जगन्नाथ जी को दारु ब्रह्म कहते हैं। ये दारु शब्द सुनकर आपके मन में कुछ और बात ना आए इसलिए बताते हैं, दारु मतलब लकड़ी होता है। तो दारु ब्रह्म कहते हैं जगन्नाथ जी को। दारू क्यों, दारू ब्रह्म क्यों कहा गया, इसका भी बड़ा महत्व है। देखिए अभी जगन्नाथ जी के विषय में अगर विस्तार से चर्चा करें तो हमने कहा दिन भर चर्चा हो सकती है, लेकिन मायापुरवासी प्रभु ने पहले ही हमें कह दिया कि जब आपको माइक मिल जाता है तो आप रुकते नहीं हो, थोड़ा सा संभाल कर, लोग आज उपवास कर रहे हैं, ज्यादा अत्याचार मत कीजिए उनके ऊपर। तो ठीक है, फिर हमें भी थोड़ा संभालना पड़ता है। तो दारु ब्रह्म कहा गया है, दारु ब्रह्म। और कहां पर कहा गया है? यही स्कंद पुराण में ही बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें भगवान को ये शब्द दारु ब्रह्म या दारु कहकर संबोधित किया गया है। वो तो श्लोक है, समुद्रस्य उत्तरे तीरे, समुद्र के उत्तरे तीरे आस्ते श्री पुरुषोत्तमे। तो एक स्थान है जिसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, पूर्णानंदमय ब्रह्मा। वहां कौन वास करते हैं? वहां वो वास करते हैं जो पूर्ण आनंद में है, पूर्णानंदमय ब्रह्मा, परम ब्रह्म है वो। और कैसे हैं? पूर्ण आनंद में है, ये भगवान है, उनके आनंद में कोई बाधा नहीं डाल सकता। हमारे आनंद में हमेशा बाधा आती है, लेकिन भगवान के आनंद में कभी बाधा नहीं आती, पूर्ण आनंदमयम ब्रह्मा। दारु भैरा शरीर भृत, तो लकड़ी के रूप में जो वहां प्रकट हुए हैं। तो भगवान लकड़ी के रूप में क्यों प्रकट हुए ये भी जानने के लिए, ये भी भगवान की उदारता और प्रेम है। कैसे भगवान लकड़ी के रूप में प्रकट हुए हैं? किस लकड़ी के रूप में प्रकट होते हैं? नीम की लकड़ी। क्यों भगवान केवल नीम लकड़ी में प्रकट होते? इतनी सारी लकड़ी, इतने सारे वृक्ष हैं, भगवान किसी में भी प्रकट हो सकते थे। आज भी वो नीम के पेड़ को ही ढूंढा जाता है। उसका एक कारण है कि भगवान ये जानते हैं या शास्त्र के नियम के अनुसार नीम की लकड़ी की पूजा हर वर्ण के लोग कर सकते हैं। चारों वर्णों के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वो नीम की लकड़ी के पूजा कर सकते हैं। और इसीलिए जगन्नाथ जी नीम की लकड़ी के रूप में प्रकट हो, ये उनकी उदारता, ये उनका प्रेम है। दारु ब्रह्मा, बहुत सुंदर भजन भी है ना, दारु ब्रह्मा जगन्नाथ, बहुत सुंदर भजन लिखे हुए भगवान के लिए। अभी हो सका तो प्रवचन के अंत में एकाध जगन्नाथ जी के लिए भजन गाएंगे। तो अगर ये प्रवचन अंत हुआ तो जगन्नाथ जी को दारु ब्रह्म कहा गया। तो एक कारण दारु का, जैसे बताया स्कंद पुराण में, तो एक कारण है कि इसका पूजन हर वर्ण के लोग कर सकते हैं। दूसरा, दारु का अर्थ क्या है? दारु शब्द का एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है। दा मतलब देना, जो प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग यशोदा शब्द कहते हैं, तो यशोदा का अर्थ क्या होता है? यशदायिनी, उसे यशोदा कहते हैं। तो दा का अर्थ है देने वाले। क्या देने वाले? परम आनंद को देने वाले। तो यहाँ दारु ब्रह्म शब्द में दा शब्द का अर्थ आता है वो ब्रह्म, वो परम पुरुष जो परम आनंद को देने वाले हैं। और कैसे देने वाले हैं? हमारे जितने मोह हैं उसको काट कर देने वाले हैं। और इसीलिए उन्हें दा शब्द से संबोधित किया गया। और रू शब्द का अर्थ क्या होता है? रू शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत अगर आप कोई जानते हैं आप में से, रू शब्द का अर्थ होता है अपनी स्थिति में फिर से स्थापित करना, स्थिति में पुनः स्थापित करना, रू शब्द का अर्थ है। तो दारु शब्द का अर्थ क्या है? दारु ब्रह्म मतलब वो पर ब्रह्म भगवान जो हम सब के मोह को काट कर, जितने भी हमारे मोह हैं, आसक्तियां हैं, उसको काट कर परम आनंद की प्राप्ति करा के, या हमें अपनी स्थिति में स्थित करा के परम आनंद की प्राप्ति कराते हैं, वो दारु ब्रह्म जगन्नाथ है। देखिए, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, हम जानते नहीं हम किनकी पूजा कर रहे हैं, वो दारु ब्रह्म है जो हमारे सारे मोह को काट कर और हमें अपनी स्थिति में, अपनी मूल स्थिति में, आत्मा के रूप में, भगवान के दास के रूप में पुनः स्थापित कर सके, वो भगवान जगन्नाथ है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप जगन्नाथ जी के दर्शन करें, तो अब तक जो हमने कहा उसको स्मरण रखिए कि भगवान आज नहीं, करोड़ों साल पहले प्रकट हो चुके हैं। उनकी कृपा, उनकी उदारता, उनका प्रेम, और कैसे वो हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, ये दारु शब्द से ही सूचित होता है। और केवल भगवान नहीं, जगन्नाथ नहीं, उनके भक्त बड़े महान हैं। जब हम जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा सुनते हैं, तो उसमें इंद्रदुम्न महाराज की कथा आती है। इंद्रदुम्न महाराज का महत्व क्या है? ये जगन्नाथ जी के प्राकट्य के समय पता चलता है। वैसे तो उनकी भक्ति सब जानते थे, देखते थे कैसे भक्त हैं, लेकिन जब अवसर आया, जगन्नाथ जी प्रकट हुए, जगन्नाथ जी ने कहा मांगो, क्या मांगना है, कोई चिंता नहीं है, जो तुम्हारी इच्छा हो उसको मांगो। तो उस समय तीन वरदान जगन्नाथ जी से मांगे, तीन वरदान इंद्रदुम्न महाराज ने। और ये तीनों वरदान उनकी उदारता, उनका प्रेम भगवान के प्रति प्रदर्शित करते हैं। आप सोचिए, स्वयं भगवान सामने हैं, हमसे कह रहे मांगो क्या मांगना है, हम लोग क्या मांगेंगे? हम लोग तो ऐसा मांग लेंगे कि बस इस जन्म में सुखी रहें, कुछ धन आ जाए, या ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे अंदर भक्ति है तो हम मुक्ति मांग लेंगे। महाराज इंद्र दुमने ने बिल्कुल नहीं मांगा। आश्चर्य होगा आपको उनके वरदान जो उन्होंने मांगे वो सुनकर। पहला वरदान उन्होंने मांगा था कि मेरे कोई संतान ना हो। शास्त्रों में हम देखते हैं भगवान की तपस्या की, भक्तों ने, भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा बस आपको पुत्र रूप में चाहता हूं, केवल आपके जैसा पुत्र हो, संतान चाहिए। भौतिक जगत में भी लोग बहुत सारे यज्ञ करते हैं, संतान नहीं हो तो उनको ऐसा लगता है कि जीवन का क्या लाभ है, दुखी हो जाते हैं, लोग कुछ कहते हैं। लेकिन यहाँ राजा इंद्रदुम जो बहुत अच्छी तरह संतान जिनके हो सकती थी, उन्होंने प्रार्थना की मुझे कोई संतान नहीं दीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो मंदिर बना रहे थे भगवान का, कल को कोई उस पर अपना अधिकार नहीं जमाए। अरे मेरे पिताजी ने बनाया, मेरे घर का मंदिर है ये, कोई अधिकार नहीं जमाए, किसी को अधिकार ना हो, ये सबके लिए है, जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, ये साबित करने के लिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा। इसे कहते हैं भक्त, इसे कहते हैं प्रेम। जब भगवान के प्रति प्रेम होता है तो वो प्रेम प्रकट होता है अन्यों का उद्धार करने में, वो प्रेम प्रकट होता है खुद कष्ट लेकर दूसरों को सुविधा प्रदान करने में, जो शिल प्रभुपाद ने किया। 70 साल की उम्र में कौन सोचता है अमेरिका जाने के लिए? आजकल लोग सोचते हैं गलत काम करने के लिए, लेकिन सन्यासी कभी नहीं सोचते। सोचा, कष्ट सहे, तकलीफें सही, अकेले रहना, रात में बाहर निकाल दिया जाना, घर ना होना, निंदा करना, क्या क्या नहीं सहा प्रभुपाद ने, लेकिन किस लिए? जगत के उद्धार के लिए। और यही चीज हम इंद्रदुम्न महाराज में देख रहे हैं। यह भगवान के भक्तों का लक्षण। भगवान का भक्त अपने आनंद से अपनी चीज के लिए कभी चिंता नहीं करता। जिस दिन उसने अपने लिए चिंता कर ली, वो भक्त में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? अरे द्रौपदी ने नहीं कहा मेरी लाज बचाओ, तो क्या वो भक्त नहीं है? द्रौपदी के बारे में रूप गोस्वामी इत्यादि लिखते हैं कि भक्त सदैव दूसरों के बारे में सोचता है, और अगर कभी कभार उन दूसरों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि द्रौपदी जानती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये जो मेरे पति हैं ये तो प्राण दे देंगे। अगर ऐसे उन्होंने देखा कि उनके सामने उनकी पत्नी के साथ ऐसा हुआ तो आत्महत्या कर ले। द्रौपदी गोस्वामी वैसे समझाते हैं कि कभी कभी अगर भक्त ऐसी काम कर ले जो आदत नहीं है उसको, मतलब उसने इतनी टेंडेंसी नहीं बनाई हुई है, तब ठीक है, कभी कभी कुछ मांग सकता है। लेकिन साधारणतः भक्त अपने लिए कुछ नहीं चाहता। एक शुद्ध भक्त, एक प्रचारक केवल लोगों का उद्धार करना चाहे। प्रभुपाद ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कहीं वर्णन नहीं है। हमने इतना प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी है, प्रभुपाद जी के विषय में पढ़ा है, प्रभुपाद के भक्तों से सुना है, कहीं ये नहीं पढ़ा कि एक जगह की कहीं प्रभुपाद ने अपने लिए कुछ मांगा कि अब बस बहुत हो गया, बूढ़ा हो गया, अब बीमार हो गया, अब भगवान एक काम करो, अच्छा सा घर बना, मैं यहीं रहूंगा वृंदावन में, बाकी इनको बोलिए ये सब जो करना है। नहीं, अंत तक प्रभुपाद ट्रांसलेशन कर रहे थे, जब तक क्षमता थी। ये एक भक्त का एक कामना होनी चाहिए। अगर हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो ये प्रार्थना करें कि जब तक इस शरीर में क्षमता है भगवान आपकी सेवा करता रहूं, जब तक हाथों में क्षमता है आपका मंदिर साफ करता रहूं, जब तक पैरों में क्षमता है आप चलकर आपके मंदिर आऊं, जब तक आंखों में क्षमता है आपका दर्शन कर सकूं, जब तक बोलने की क्षमता है कम से कम आपके बारे में बोलता रहूं, अगर मैं मृत्यु के कगार पर भी हूं, मरने वाला हूं, डॉक्टर ने कहा 3 घंटे बाकी हैं, तो वो 3 घंटे आपकी कथा करके मैं जाऊं। ये भक्त का भाव होना चाहिए। इंद्रदुम्न महाराज इस बात को कहते हैं कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए। हमने जो पहली बार इस कथा को पढ़ा था, ये केवल सुनकर हमें आश्चर्य इतना लगा था कि कैसे कोई मांग सकता है ऐसे भगवान से कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए। वो भी किस लिए कि आगे आकर बड़ा होकर मेरे जाने के बाद वो आपके मंदिर पर अधिकार नहीं जमाए। ये भगवान की कृपा है। दूसरा वरदान, ये तो एक वरदान मांगा है इंद्रद्युम्न महाराज। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा, देखिए वो वरदान मांग रहे। वरदान किस लिए मांगा जाता है? अपने लिए। साधारणता जीव अपने लिए मांगते हैं। पहला ही वरदान उन्होंने मांग लिया, मुझे संतान नहीं चाहिए, ताकि आप सबके रहें, आप किसी एक विशेष व्यक्ति के, किसी जाति के, किसी धर्म के नहीं हो जाएं, आप सबके रहें। इसीलिए जगन्नाथ जी सब धर्मों के हैं, वहां जैन धर्म वाले भी आते हैं। जो जगन्नाथ जी के मंदिर में सिंह द्वार से लेकर अंदर तक जाने तक जो 22 सीढ़ियां हैं, जो जैन धर्म के लोग मानते कि हमारे 22 तीर्थंकर हैं, जगन्नाथ जी क्या 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 नहीं, सारे धर्म के लोग आते हैं। गणेश जी के भक्त आते हैं, शिव जी के भक्त आते हैं, शिव जी के भक्त उनको शिव मानते हैं। इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा किसी के लिए किसी का बंधन ना हो। दूसरा वरदान इंद्रद्युम्न महाराज ने मांगा कि हे भगवान, आपके मंदिर में कभी प्रसाद की कमी ना हो। आप मतलब लोगों की बात नहीं, आप दिन भर खाएं, ये मेरी दूसरी कामना। पहली कामना उनकी थी अन्य लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए, कि किस तरह कोई अधिकार नहीं जमाए, हर एक के लिए हो। दूसरी कामना भगवान के लिए उन्होंने की, आप दिन भर खाएं, ये मेरी प्रार्थना है। देखिए भक्तों के लिए कभी कभी खाना तपस्या हो जाता है, कभी कभी कहीं पर जाते हैं तो बहुत खाना पड़ता है, लोगों का प्रेम इतना उमड़ता है कि वो हमारे पेट से मैच नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभी करना पड़ता है तपस्या। लेकिन जगन्नाथ जी आदेश पालन कर रहे हैं इंद्रद्युम्न महाराज का, दिन भर खाना है आपको, वो खाते हैं दिन भर खाते हैं, ताकि प्रसाद की कमी ना हो। प्रसाद के बारे में थोड़ा सा आगे वर्णन करेंगे, जहां शिव पुराण का वर्णन आएगा, हम प्रयास करेंगे अगर वहां तक पहुंचे तो। शिव पुराण में 7 द्वार बताए गए हैं जगन्नाथपुरी के विषय में। जगन्नाथपुरी के ये 7 द्वार मुक्ति के द्वार हैं, जब उस पर आएंगे तो चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों के अंदर शक्ति है ना, अभी हमने प्रारंभ किया है, केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो मायापुरवासी प्रभु कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। पूछना था कितने समय तक क्लास होगी, वैसे उसके हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। मायापुरवासी प्रभु कहीं हैं, अनाउंसमेंट कराओ, मायापुरवासी प्रभु जहां भी हो उपस्थित हो जाए, वारंट निकालो उनका। अच्छा ठीक है, मदन गोविंद प्रभु आप बता दीजिए। यस प्रभु, क्लास कितने बजे तक है? थैंक यू
प्रभु जी, जब तक आप चाहें।
ऐसे मत बोलिए, फिर आपको बोलने का पश्चात आप ना हो, ऐसी चीज मत बोलिए कि हमें कोई कह दे जब तक आप चाहें, तो फिर जब तक आपकी आंखों में आंसू नहीं निकल आएंगे और आंसू निकल कर जमीन पर बैठ कर आप प्रार्थना नहीं करोगे कि बस प्रभु जी बंद कीजिए। तब अभी 2:15 हो गया, हमने 1 बजे शुरू किया था, कितने बजे तक चल सकती है कथा बता देता हूँ उस हिसाब से।
3 बजे
तक ना। हाँ देखिए, घबरा गए मदन गोविंद प्रभु की कहीं सही में घुटनों पर बैठकर प्रार्थना ना करनी पड़ जाए। थैंक यू प्रभु। तीन बजे तक तो ठीक है, प्रयास करेंगे कथा को करने का। तो भगवान जगन्नाथ की ये दूसरा चीज क्या मांगा कि आप बस खाते रहिए, दिन भर खाइए, ताकि लोगों को प्रसाद मिल सके। तो ये भी भक्त का भाव है कि कैसे भगवान की सेवा होती रहे, भगवान की सेवा में कमी ना हो, चाहे अवस्था कैसी ही क्यों ना हो। ये एक भक्त को बड़े ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की सेवा में कभी कमी ना हो, चाहे आप घर में भगवान की सेवा कर। जगन्नाथ जी तो घर घर में पहुंच गए हैं आजकल, अभी अभी दर्शन कराए मदन गोविंद प्रभु ने, एंड आशा है आप सबके घर में भी हैं और अभी प्रवचन खत्म होने के बाद आप सब दर्शन कराने वाले हैं डीटीस के। तो अगर सोए नहीं हैं उठाइएगा नहीं, अगर सो गए हैं तो ठीक है। तो अपने अपने घर में भी, चाहे ऐसा नहीं कि मंदिर में ही अच्छा हो, अपने अपने घर में भी सर्वोत्तम चीज भगवान को अर्पण कीजिए, जगन्नाथ जी को दीजिए। जहां जगन्नाथ जी हैं वहां प्रसाद की कभी कमी नहीं होती है। तो ऐसे जगन्नाथ जी को दूसरा वरदान उन्होंने मांगा था। तीसरा वरदान राजा इंद्रदुम्न ने मुझे मांगा कि आप केवल 3 घंटा आराम करेंगे और दर्शन देते रहेंगे सबको। तो सोचिए, दिखने में लग रहा है कि पनिशमेंट हो रही है भगवान के लिए। एक तरफ कह रहे खाए जाइए, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि आप सोइएगा नहीं, 3 घंटा केवल सोइए। लेकिन भगवान के लिए आनंद का विषय है। भगवान जब अपने भक्तों को देखते हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जब उनका ऑल्टर बंद होता है वो खुश नहीं होते हैं। भगवान होना पड़ता है क्योंकि नियम बना दिए गए हैं। लेकिन भगवान को आनंद तब आता है कि अगर पट खुले हों, भक्त सामने हो, जोरदार कीर्तन हो रहा हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त तो तब प्रसन्न होते हैं जब जोरदार कीर्तन होता है, और भगवान प्रसन्न होते हैं उस कीर्तन को देखकर। तो इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की कि आप सोना नहीं ज्यादा, केवल 3 घंटे सोना और आप बाकी समय दर्शन देते रहना। तो जगन्नाथ जी ने 3 घंटे के लिए पट बंद कराए और उसमें भी सोते नहीं है, देते रहते, देवताओं को दर्शन देते रहते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी हैं जिनका वर्णन कई पुराणों में किया गया। और जगन्नाथ जी की लीलाओं में श्रेष्ठ लीला रथ यात्रा मानी जाती है। और ये रथ यात्रा क्या है, आज तो वर्णन पूरा नहीं करेंगे रथ यात्रा का। रथ यात्रा के कई प्रकार से वर्णन है। आप सबने सुना नहीं होगा 16वीं सदी में 6 रथ होते थे। ये रथ यात्रा आज से प्रारंभ नहीं है, ये हजारों हजारों साल से चल रही है। और 16वीं सदी में 6 रथ जाते थे और उस समय एक नदी थी मंदिर से गुंडीचा के बीच में, तो साथ में बोट चलती थी उस समय। आज वो नदी गायब हो गई है, बोट्स गायब हो गई हैं, 6 के 3 रथ हो गए हैं। अब पता नहीं आगे आगे जैसे कलयुग बढ़ेगा क्या होगा रथ यात्रा का। तो ऐसे रथ यात्रा के विषय में बहुत सी चीजें हैं जानने योग्य जो हम जान सकते हैं। लेकिन मूलतः रथ यात्रा, इसका महत्व भक्त के जीवन में क्या है, ये हमें समझना चाहिए। रथ और भगवान जो रथ पर बैठे हैं, इसकी तुलना शरीर और आत्मा से की जाती है। जैसे भगवान रथ पर बैठे हैं, विराजमान हैं, ऐसे ही भगवान हमारे शरीर रूपी रथ पर भी हैं। और जैसे भगवान का रथ चलता है, उद्देश्य क्या होता है, उद्धार करना। तो जो रथ यात्रा है, जहां खींच कर लाया जाता है भगवान को, तो हमें भी अपने इस हृदय रूपी रथ में भगवान को विराजमान करना चाहिए, खींच कर लाना चाहिए। और जब भगवान आ जाएं तो क्या करना चाहिए, किस व्यक्ति के हृदय में भगवान आ सकते हैं, कैसे भक्त, ऑफकोर्स भक्त होना चाहिए, लेकिन भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए, भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ जी को हृदय में लाना है तो इस बात को समझना है कि एक भक्त को कुछ चीजों को जरूर पालन करना चाहिए, ताकि भगवान उसके हृदय में रहें और उसके हृदय से अन्यों के हृदय में जा सकें। उद्देश्य ये है, अपने हृदय में बंद करके नहीं रखना है ताला लगाकर हमें भगवान को। अगर प्रभुपाद ने ये किया होता तो आज हम लोग पता नहीं कहाँ होते, इस समय कथा नहीं कर रहे होते, एकादशी के दिन किसी शराब के दुकान पे खड़े होते लाइन लगाकर शराब की बॉटल खरीदने के लिए, जैसे आजकल लोग खड़े हैं काफी, ये कुछ और कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हृदय में भगवान को लाना और उनको अन्यों को देना। तो क्या आचरण एक्सपेक्टेड है एक भक्त से, कैसे हम मान सकते हैं कि भगवान के हृदय में आएंगे। सबसे पहली चीज, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। 5 चीजों का वर्णन करेंगे, एक भक्त के लिए, और फिर आगे जगन्नाथ जी की कथा करेंगे। तो पहला है स्वभाव अच्छा होना चाहिए एक भक्त का। स्वभाव अच्छा होने का अर्थ क्या है? स्वभाव और आचरण दो अलग चीज हैं, अभी आचरण पर भी आएंगे। स्वभाव अच्छा होना चाहिए मतलब किसी भी व्यक्ति की प्रगति को देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए, दूसरे को मदद करने का भाव होना चाहिए, सहयोग करने का भाव होना चाहिए, हरेक व्यक्ति को कृष्ण की ओर ले जाने की प्रयास का भाव होना चाहिए। अच्छा स्वभाव मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति कभी जीवन में क्रोध ही नहीं करता। अच्छा स्वभाव वो है जहां वो केवल अन्यों की प्रगति के बारे में चिंतन करता है। अच्छा स्वभाव वो है जहां वो जब देखता है कि दूसरा कोई भी अगर भगवान के निकट आ रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो उसकी मदद करता है, उसको आगे बढ़ते देखकर हृदय में द्वेष नहीं होता, प्रसन्नता होती है। आप सोचिए हम लोगों को कितनी प्रसन्नता होती है जब हम लोग किसी को आगे, किसी को एक नए भक्त को, बस एक नए व्यक्ति को हरि नाम लेते देख लेते हैं। कई बार हमने ये अनुभव किया है, हम लोग सड़क पर कीर्तन करते जा रहे हैं और सड़क पर कीर्तन करते करते जाते देखते हैं कि कहीं कोई ऊपर अपने घर पर खड़ा है, उसने बस दोनों हाथ ऊपर उठा दिए ऐसे वहीं से, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। कभी कभी हम सोचते हैं क्या प्रसन्नता है, क्या किया उसने, केवल एक अपने बालकनी में खड़े होकर दोनों हाथ उठा दिए, लेकिन हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, और हम भी दोनों हाथ उठाकर उसको बोलते हैं हरे कृष्ण बोलिए। तो क्या प्रसन्नता है ये, देख लिया कि उसने भगवान के लिए हाथ उठा दिए हैं दोनों, तो उसने भगवान के लिए हाथ उठा दिए तो भगवान का हाथ उसके सर पर निश्चित आएगा, ये भाव होता है भक्त का, इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं। तो अच्छा स्वभाव का अर्थ ये है कि हम अन्यों की, अपने आसपास रहने वाले भक्तों की, अपने कम्युनिटी में रहने वाले भक्तों की, या फिर सारे जगत के लिए हम कैसे प्रयास कर रहे हैं उनको अच्छा बनाने का, ये अच्छा स्वभाव। और फिर अच्छा स्वभाव ही पूर्ण नहीं है, हमारे जो शब्द हैं वो भी बड़े मधुर होने चाहिए, मधुर शब्द। क्योंकि कई बार दुश्मन को गोली से मारा जाता है लेकिन संबंधी को शब्दों से मारना बहुत है, या फिर जिससे आप प्रेम करते हो, जिसके निकट हो, उसको तो शब्दों से ही मारना बहुत, इसलिए मधुर शब्द होने चाहिए। जब हम बोलें तो बोलने से व्यक्ति हमारे शब्द सुनकर कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाए, कह रही ये व्यक्ति है कौन जिसके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं, फिर हम और सुनना चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में ये बोल रहे हैं। ऐसे शब्द होने चाहिए, मधुर शब्द। और साथ साथ हमारा आचरण बड़ा अच्छा होना चाहिए। एक है स्वभाव, दूसरा है आचरण। कभी कभी व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है लेकिन आचरण बुरा होता है। कई बार आपने ये सुना होगा कि हम लोग कहते हैं वो व्यक्ति दिल से बुरा नहीं है, वो थोड़ा बोल देता है ऐसा कर लेता है लेकिन दिल से बुरा नहीं है। आचरण अच्छा चाहिए, क्यों? आचरण आकृष्ट करता है लोगों को कृष्ण की ओर, या फिर आचरण लोगों को दूर फेंक सकता है कृष्ण से, आपका आचरण। एक उदाहरण देते हैं, प्रसाद बट रहा है, नियम यह है कि अब केवल उन लोगों को मिलेगा जो केवल ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं, उदाहरण दे दिया, या दीक्षित भक्तों को पहले मिलेगा। सारे दीक्षित भक्त बैठे प्रसाद ले रहे हैं, एक कोई नया व्यक्ति आया, उसको पता भी नहीं कि दीक्षा क्या है, उसको लगा प्रसाद है, वो भी बैठ गया। अब दो स्थितियां देखिए, कैसे हमारे अच्छे आचरण आकृष्ट करते हैं। हमने आकर देखा ये बैठा है, चलो उठो, क्या कर रहे यहाँ, पता नहीं केवल दीक्षित भक्तों के लिए। प्रभु जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो सोचे प्रसाद बट रहा है, अब मुझे थोड़ी जल्दी भी है, आप कहें तो ले। कहा ना आपको, जाइए उधर जाइए, यहाँ मत खड़े होइए, एकदम जाइए, बाद में आइए। वो व्यक्ति बाद में कभी नहीं आएगा जिसको आपने कह दिया बाद में आइएगा। दूसरी ओर, दूसरा, हमने आए, हमने देखा कि बैठे हैं, हमने अब बैठे हैं तो हाथ जोड़ा, मैंने कहा प्रभु जी क्या लेंगे आप, नए आए हैं, आप पहली बार आए हैं? मैंने कहा हाँ पहली बार आए, कुछ नहीं बोलना है, समझ में आ गया कि क्यों बैठा है, पहली बार आए हैं, बस अच्छे से प्रसाद दें, थोड़ा बाद में बात करें, वो व्यक्ति बारंबार आएगा। हमारे आंदोलन में कई ऐसे भक्त हुए हैं जो केवल अपने आचरण से जिन्होंने भक्तों को, अन्यों को आकर्षित किया। ऐसे कई नाम अभी इस समय आ रहे हैं प्रभुपाद जी के शिष्यों में, जयानंद प्रभु, जिनके केवल आचरण इतना अच्छा था कि कितने सारे भक्त आकर्षित हुए उनसे, उनका आचरण देखकर। तो इसीलिए आचरण बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ सबसे प्रेम करना बहुत आवश्यक है, सच्चा प्रेम। हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे प्रेम होना चाहिए कि क्या मैं कर सकता हूं इसके लिए। भक्तों से मिलते हैं, भक्त साथ में रहते, प्रेम उत्पन्न कीजिए। और उसके लिए पांचवी चीज एक भक्त को करनी चाहिए, अपनी सहनशीलता को बढ़ाना। जब सहनशीलता की कमी हो जाती है तब ना तो हम अच्छा आचरण कर पाते हैं, ना हमारा स्वभाव अच्छा रह जाता है, ना ही हमारे शब्द अच्छे होते हैं, प्रेम का तो कहना ही क्या। सहनशीलता बढ़ाई, तो इस तरह ये भक्तों के लक्षण हैं। तो ये इंद्रदुम्न महाराज ने मांगा था जगन्नाथ जी से ये चीजें, और ऐसे रथ यात्रा का हम वर्णन कर रहे थे कि हमें भगवान को अपने हृदय में प्रवेश कराने के लिए ऐसे कार्य अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो अब जब जगन्नाथ जी का ये वर्णन हो, क्योंकि जगन्नाथ जी के हम जो बता रहे थे क्षेत्र में कई विशेषताएं हैं, उनमें से एक विशेषता प्रसाद है। जैसे कहा जाता है कि वृंदावन में जाकर वहां की रज में लेटना चाहिए, लौटना चाहिए, लेटना नहीं, लौटना चाहिए। मायापुर में जाकर गंगा में स्नान करना चाहिए, और जगन्नाथपुरी में जाकर गले तक भरकर खाना चाहिए। जगन्नाथपुरी का विशेषता है। तो इसीलिए बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां भक्तों ने भगवान से अपने प्रेम का आदान प्रदान किया। तो लीलाओं को कहने के पहले हम सोच रहे हैं कि कुछ शिव पुराण के अनुसार जो सात द्वार हैं जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी से संबंधित जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, उनका वर्णन करें, अगर आप सबकी अनुमति हो। आप सब सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथ ऊपर कीजिए, तो हमें समझ में आएगा कि आप लोग सुनना चाहते। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो लोग अपना वीडियो ऑडियो ऑफ करके जा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे हम बीच बीच में पूछते रहेंगे अगले 2-3 घंटे में, तो आप लोग तैयार रहिएगा। वैसे भी आज निर्जल एकादशी है, कुछ करना है नहीं, और अगर कुछ काम नहीं हुआ तो खाने पीने की इच्छा आ जाएगी, इसलिए कथा सुनते रहना चाहिए। तो सात द्वार शिव पुराण में बताए गए हैं जगन्नाथ जी के, जिसको जिससे मुक्ति प्राप्त होती है, और ये सात बहुत सरल द्वार हैं। इनमें से कुछ तो आप पालन भी करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा उसको और रिफाइन करेंगे। तो सात बड़े सरल द्वार जिससे हम मुक्त हो सकते हैं शिव पुराण के अनुसार। पहला द्वार है स्मरण। ऐसे बताते हैं कि अगर कोई जगन्नाथ जी का या जगन्नाथपुरी का स्मरण मात्र कर लेता है, उसका उद्धार हो जाता है। पहला द्वार है, जैसे पद्म पुराण में लिखा है कि अगर कोई भक्त का स्मरण मात्र करता है तो भक्त के पुण्य का 100वां हिस्सा उसको मिल जाता है। जगन्नाथ जी का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, तो फिर कहना ही क्या। तो पहला द्वार है स्मरण, कि जहां हम केवल कृष्ण का स्मरण, जगन्नाथ जी के उस रूप का स्मरण कर लें, कहीं भी हो हम, किसी भी अवस्था में हो, चाहे प्लेन में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, भोजन ले रहे हो, हॉस्पिटल में पड़े हो, केवल जगन्नाथ जी का स्मरण। कैसा स्मरण? उनकी दो बड़ी बड़ी आंखें, जगन्नाथ जी के हाथ, जगन्नाथ जी अपने दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं हमारे लिए। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, उन्होंने हाथ मोड़ के रखे हुए हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते। रामचंद्र जी के हाथ में धनुष बाण है, उनके भी हाथ खाली नहीं है। जब हम जाएंगे तो उनको देखना पड़ेगा भाई, या तो किसी को कहेंगे हनुमान जी आप संभालो इनको, क्योंकि इनके हाथ में धनुष बाण है, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, नरसिंह देव का तो कहना ही क्या, सभी हाथों में आयुध है उनके, लेकिन एक जगन्नाथ जी हैं जो बस हाथ फैलाए खड़े हैं, आ जाओ आप सबके लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। कब से इंतजार कर रहे हैं? 15 करोड़ सालों से। जगन्नाथ जी का ऐसा रूप है। तो पहला है स्मरण, जैसे, और स्मरण कैसा होना चाहिए? बड़ा तीव्र, जैसे प्रहलाद का स्मरण था। हम सब जानते हैं कि प्रहलाद को जब मारने का आदेश दे दिया गया उसके पिता ने, तो उस समय, एक समय की बात है कि रात्रि के समय ये लोग प्रहलाद के कमरे में गए, सैनिक इसको मार डालेंगे सोते सोते ही, तो देखा प्रहलाद अपने कमरे में और बिस्तर पर बैठे हुए हैं और बैठे हैं ध्यान मग्न है। तो इन्होंने सोचा कि क्या करें, तो बैठे हैं सोए नहीं है, मारे कैसे? तो किसी ने कहा चलो उठा के ले जाते हैं, इसको समुद्र में फेंक देंगे। तो उन्होंने बिस्तर से उठाया प्रहलाद को, कुछ पता नहीं चला, लेकर गए पहाड़ के ऊपर, प्रहलाद को पता नहीं चला, फेंक दिया समुद्र में, प्रहलाद को पता नहीं चला। ये स्मरण था प्रहलाद का, सतत स्मरण, इतना तीव्र स्मरण, जो आजकल हम लोगों का भी होता है। ऐसा नहीं, हम लोग प्रहलाद से कम नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए केवल प्रहलाद कर सकते हैं। हम लोग कितना करते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो कोई और स्मरण हो सकता है? सतत स्मरण, अगर मैच चल रहा है तो कहीं भी होंगे हम, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, या कहीं घर में है, स्मरण यही रहता है, स्कोर कितना हुआ, जीत रही है कि नहीं जीत रही है इंडिया, कितना तीव्र स्मरण करते हैं हम लोग। या फिर राजनीति का, और या फिर आजकल कोरोना का, उसके बिना किसी की बात ही नहीं है। आप किसी को फोन कर लीजिए, पहली चीज यही आती है, भारत में 2 लाख क्रॉस हुआ या नहीं हुआ, तो सब वही चिंता कर रहे हैं, कितने मरे, किस कहां कहां पर मरे, रेड जोन कहां है, कंटेनमेंट जोन कहां है, आपके यहाँ कितने हो रहे हैं। हम भी यही करते कभी कभी बात करके कि भाई क्या हो रहा है वहां पर, क्योंकि सारे लोग उसी में फंसे, पूरा स्मरण कोरोना का है। हम तो सोच रहे थे कि अगर ऐसी बीमारी आती, ये जो बीमारी इकाई है, कि ऐसी बीमारी आ जाए कि जैसे ही वो बीमारी लगती है व्यक्ति के मुख से हरी हरी निकलने लगता है, जैसे ही वो वायरस अंदर जाए वो महामंत्र बोलने लगे, कितना अच्छा होगा। और दुनिया भर में जो बोल रहे वो तो है ही लाखों लोग, और जो नहीं बोल रहे वो चर्चा करेंगे, अरे कितने लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू किया, अच्छा तुम्हारी कंट्री में 2 लाख, ओ हमारे में तो अभी तक 1 लाख ही है, कितना आनंद आएगा। तो ऐसे ही भगवान को वायरस भेजनी चाहिए कि अंदर जाए और महामंत्र बाहर निकले, और जब तक वो उससे प्रभावित रहे, वो पॉजिटिव रहे, तब तक सतत मंत्र करता रहे और कुछ नहीं, उसको कोई वेंटिलेटर की जरूरत ना हो, कोई दवाई की जरूरत ना हो। इसलिए हमारा स्मरण सतत बहुत तीव्र होना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है या द्वार है श्री जगन्नाथ जी के लिए, या जगन्नाथ जी का स्मरण करने के लिए, मुक्त होने के लिए। तो स्मरण क्या होना चाहिए, हमारा तीव्रता बढ़नी चाहिए स्मरण की। ऐसा नहीं कि कभी कभी स्मरण आ गया, अच्छा रथ यात्रा है, एक बार गए थे 3 साल पहले, जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे हमने, नहीं, तीव्रता होनी चाहिए। दूसरा द्वार, अब थोड़े से अच्छे द्वार भी आ रहे हैं, वैसे तो सारे अच्छे द्वार हैं। पहला है स्मरण, बड़ा स्मरण करें भगवान का, और जब मेहनत कर ली, दूसरा द्वार बताया गया है भगवान के जगन्नाथपुरी में मुक्त होने का, महाप्रसाद। ये महाप्रसाद एक द्वार है मुक्ति का, क्यों? क्योंकि जगन्नाथपुरी में जो भी बनता है मंदिर के में भगवान को भोग लगने के लिए, वो लक्ष्मी देवी द्वारा बनाया जाता है, लक्ष्मी देवी खुद वहां पर खड़ी होकर बनाती हैं उसको, और इसके महिमा तो हम कई बार सुन चुके हैं, आप सबने भी सुनी होगी कथा, हमने कई बार, हमें याद है उदयपुर में भी सुनाई है कि कैसे ये जो प्रसाद की महिमा है, प्रसाद कैसे आया पृथ्वी पर, क्योंकि नारद मुनि जब एक बार गए, उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी सर्विंग कर रही हैं, भगवान खा रहे हैं, तो उन्होंने लक्ष्मी देवी से कहा कि जब भगवान खा लें तो थोड़ा सा महाप्रसाद उनकी प्लेट से सीधा मुझे चाहिए। तो जो भगवान की प्लेट से आता है उसको महाप्रसाद कहते हैं, जो अन्य होता है वो प्रसाद कहलाता है। इसीलिए जो भगवान की प्लेट से आता है उसको कभी फेंकना नहीं चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसको एक दाना भी फेंकना नहीं चाहिए। वैसे तो अन्न का भी एक दाना नहीं फेंकना चाहिए, अग्नि पुराण में लिखा है कि अगर एक दाना भी अन्न का कोई फेंकता है तो उसको 10 जन्म लेने पड़ते हैं। तो क्यों हम लोग वैसे ही इतने कष्ट में हैं और जन्म लेने की क्यों कामना करें, इसलिए फेंकना नहीं चाहिए। और महाप्रसाद तो बिल्कुल नहीं। तो नारद मुनि ने प्रार्थना की थोड़ा सा दे दीजिए, प्लेट से चाहिए। लक्ष्मी देवी ने कहा बिल्कुल नहीं, भगवान के पूछे बिना नहीं, आप माँ हैं। तो क्या होता है ना, स्त्रियों का जो हृदय है, लक्ष्मी देवी की परंपरा में जो स्त्रियां हैं उनका जो हृदय है बड़ा कोमल होता है। माँ माँ शब्द सुनते ही उसके बाद वो अपनी क्या बोलते हैं प्रतिज्ञा बनाए नहीं रख सकती, इतना प्रेम होता है उनको अपने संतानों से, पुत्र से। तो जब उन्होंने कहा नारद मुनि ने, आप माँ हैं, मैं तो आपके संतान हूँ, इतना नहीं कर सकते आप मेरे लिए। नारद मुनि ने थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया और फिर वो मातृत्व का भाव तीव्र हो गया लक्ष्मी देवी के हृदय में। उन्होंने कहा ठीक है, चिंता नहीं करो, तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। तो जब भगवान खा चुके, प्लेट जा रही थी, तो उसमें से थोड़ा सा महाप्रसाद नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने केवल हाथ में प्रसाद आया, नारद मुनि ब्रह्मांड में नृत्य करने लगे, ब्रह्मांड के बाहर चले गए, नृत्य करते करते कैलाश पहुंच गए। देख रहे शिव जी, देख रहे क्या हो रहा है, ये क्या हुआ नारद मुनि। और नारद मुनि बड़े प्रसन्न कीर्तन कर रहे। और फिर शिव जी ने रोका, पूछा, तो उन्होंने बताया कि आज मुझे भगवान का प्रसाद मिला। शिव जी ने हाथ पकड़ा नारद का, कहाँ है, बोले वो तो मैं खा गया। फिर शिव जी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा नारद तुम कैसे व्यक्ति हो, मेरे लिए नहीं सोचा, नारद जी का प्रसाद मिला तुरंत खाना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है कि प्रसाद जब भी किसी भी अवस्था में आपको मिले उसको तुरंत खा लेना चाहिए। इसको सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं। एक समय की बात है कि सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंच गए, वर्णन है कि सूर्योदय के भी पहले, इतनी सुबह। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य उठे नहीं थे, उठ रहे थे बैठ से। सार्वभौम भट्टाचार्य उठे और उन्होंने देखा, अरे कौन, महाप्रभु आ रहे, भाग कर आए, स्वागत किया। तो महाप्रभु आए, बैठे और उन्होंने अपना प्रसाद लाए थे मंदिर से, तो खोला। अभी सुबह उठे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, बेड से सीधा, न मुंह धोया है, न स्नान किया है, कुछ नहीं, अभी उठे हैं। तो उन्होंने जब प्रसाद दिया महाप्रभु ने, तो नियम क्या होना चाहिए, वो कहेंगे कि आप रख दीजिए, हम थोड़ा नहा कर लेंगे, अभी नहीं लेंगे। लेकिन तो कुछ नहीं, जैसे ही उन्होंने प्रसाद को देखा तो उन्होंने पद्म पुराण के 2 श्लोक कहे, ये साबित करने के लिए कि अब वो जो करने जा रहे हैं वो शास्त्र के सम्मत है। तो क्या किया उन्होंने, क्या बताया श्लोक में, उन्होंने बताया कि जो महाप्रसाद होता है, पद्म पुराण में लिखा है कि जो महाप्रसाद होता है वो किसी भी तरह का हो, इवन बासी ही क्यों ना हो, और उसके लिए कोई समय काल नहीं, काल स्थिति कुछ नहीं है, जैसे ही मिले उसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार किया ऐसी अवस्था में, और महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ ये सही है। तो इसीलिए ये जो प्रसाद है इसकी बड़ी महिमा है। और जब भी हम मंदिर जाएं, बिना प्रसाद लिए वापस नहीं जाना चाहिए। कभी कभी लोगों को शर्म आती है, मंदिर जाते हैं, अगर मिल गया प्रसाद ठीक है, नहीं मिला तो मांगते नहीं वापस, मांगना चाहिए, कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है प्रसाद के लिए। शर्म करेंगे तो फिर हमेशा इधर ही पड़े रहेंगे, और शर्म नहीं करेंगे तो आनंद का अनुभव करेंगे। जैसे एक बार एक भक्त आए थे उस समय, काफी समय पहले, तो विदेश से आए थे, हैं भारतीय लेकिन विदेश से आए थे, तो जगन्नाथपुरी गए, और वो दिखने में थोड़े विदेशी लगते हैं। जब जाने लगे अंदर तो जगन्नाथपुरी में रोक दिया, उनको जाने नहीं दिया। अरे उन्होंने कहा मैं भारतीय हूँ। आप क्या नाम है आपका, ये नाम, आपके पिता का नाम क्या, ये नाम है, आपके दादा का नाम क्या, ये नाम, आपके गोत्र क्या है, ये सब पूछा। फिर भी उनको पूरा उनका सारा कुछ सामान रखवा लिया कि आप सारा सामान यहाँ रख के जाओ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपना पैसा, अपना वो जो भी था वो सब रख दिया उनके पास, और वो चले गए अंदर। तो अंदर गए, दर्शन किया, बहुत प्रसन्न हो गए, जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ। बाहर आए तो देखा कि प्रसाद बिखरा था। आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी के मंदिर के आप बाहर भी आओ, प्रदक्षिणा करो तो बैठे रहते हैं लोग, प्रसाद बेचते रहते हैं, प्रसाद बिक रहा था। अब इनकी इच्छा हुई प्रसाद लेना है, लेकिन पैसा वैसा तो सब बाहर था, कुछ नहीं दिया था, वो लोगों ने सब रख लिया था, एक रुपया नहीं इनके पास, अब ले कैसे। और बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ये मत सोचिए कि कुछ ऐसे छोटे छोटे, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो सोच रहे क्या करें, जगन्नाथपुरी में तो प्रसाद चाहिए। देख रहे थे तो देखा कि एक आदमी आया, वो जो बेच रहा था प्रसाद उसके पास, और उसने ऐसे हाथ आगे किया उसके सामने, उस व्यक्ति के सामने ऐसे हाथ आगे किया। तो ये जो व्यक्ति बेच रहा था, उसने थोड़ा सा चावल वगैरह उठाया, दे दिया उसके हाथ में। तो इन्होंने देखा, उन्होंने कहा मैं भी ऐसे ही कर सकता हूँ, बहुत अच्छा है। क्योंकि और इन्होंने जीवन में कभी भिक्षा नहीं मांगी, बहुत बड़े व्यक्ति हैं ये, और बाहर जो उनका बटुआ वटुआ सब रखा था, धन बहुत रखा था, लेकिन अब वहां कुछ नहीं है। तो उन्होंने सोचा प्रसाद चाहिए, तो जब उसको देखा तो उन्होंने भी जाकर सामने ऐसे पहली बार जीवन में हाथ फैलाया, और उनको उनको भी देखकर उसने प्रसाद दे दिया। वहां पर एक नियम ये अच्छा, बहुत अच्छा है, हमने देखा जगन्नाथपुरी कि हाँ जो पैसे देते हैं उनसे वो लेते भी हैं, पैसे लेके देते हैं, लेकिन अगर कोई भी जाकर ऐसे हाथ आगे कर दे तो दे देते, मना नहीं करते। तो उनको प्रसाद मिला, उनको इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, वो थोड़े से राइस, दाल राइस जो भी था वो हाथ में लेकर, आप सोचिए बहुत बड़े व्यक्ति हैं, घर में खाने की कोई कमी नहीं है, जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन वो जो मांग कर वो जो प्रसाद लिया उससे इतना आनंद आया। बाहर आते ही उन्होंने उनको सबसे पहले फोन किया, प्रभु जी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या हुआ? बोले आज मुझे ऐसे ऐसे प्रसाद मिला, बहुत प्रसन्न। तो वो क्या प्रसन्नता थी, देखिए उनको इतना सा प्रसाद मिला, तो वो भी कैसे भीख मांग कर, लेकिन भगवान का प्रसाद था। इसलिए जब भी मंदिर जाएं, बिना प्रसाद के वापस नहीं जाना चाहिए, नहीं मिले मांगिए। मंदिर के प्रबंधन का, मैनेजमेंट का ये कर्तव्य है कि जो भी मंदिर में आए उसको प्रसाद मिलना चाहिए, बिना प्रसाद के मंदिर से कोई बाहर नहीं जाए, ये प्रभुपाद का आदेश है। हर मंदिर में ऐसा होना चाहिए कि बिना प्रसाद के कोई बाहर नहीं जाए। और आप लोग भी जब जाए मंदिर तो प्रसाद मांगिए, कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि भगवद गीता में लिखा है कि हमें प्रसाद खाने से ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, किल्बिषे मतलब जितने भी दुर्गुण हैं वो सब से हम छुटकारा पाएंगे, सारे कलमश से छुटकारा पाएंगे। कैसे? यज्ञ शिष्टा शिना संतो, भगवान को अर्पण किया गया प्रसाद जब स्वीकार कर। मंदिर जाए तो शर्म मत कीजिए, ये नहीं हम कैसे मांगे, मांगिए प्रसाद, प्रसाद खाकर ही आइए, तो इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा। इस समय हम लोग किसके पीछे भागते हैं? केवल जिह्वा की संतुष्टि के लिए। जिह्वेर लालसा जीव इति उति धाय, शिष्णोदर परायण का भूकृष्ण ना ही पाए। बस पेट को संतुष्ट करना है, जिह्वा को संतुष्ट करना है, उसके लिए भाग रहे हैं पेट भरने के लिए। लेकिन आप जान लीजिए कि जो हमारा पेट भी भरता है या कुछ खाने को मिलता है, ये भी कृष्ण की कृपा है, तब मिलता है। किसी के पास बहुत धन हो तो भी उसको नहीं मिल सकता। इसका एक उदाहरण, कुछ साल पहले जब इराक और कुवैत का युद्ध हुआ था, पता नहीं आप में से कोई अगर कुवैत में थे तो आपने उस समय को देखा होगा। तो उस समय की बातें हमने सुनी है कि कुवैत में भारतीय कई थे, और भी कई लोग जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत धन था, लेकिन जिस दिन ये डिक्लेयर हो गई, वॉर हो गया, उनको अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। और ऐसा वर्णन है कि उनको रेफ्यूजी कैंप्स में जाकर शरण लेनी पड़ी, और वहां पर लाइन में खड़े होकर प्लेट में जो मिलता था वो खाते थे। थे कौन? करोड़ों करोड़ों रुपए उनके पास, लेकिन सब छोड़कर भागना पड़ा। प्रत्यक्ष देखा गया है, भगवान की इच्छा ना हो तो करोड़ों रुपया भी आपको आपको भोजन नहीं दिला सकता एक समय। तो इसलिए हमें भगवान के प्रसाद, तो आप लोगों के लिए हमारा ये कहना है कि आपको एक नियम बनाना चाहिए जीवन में, जहां भी जाएं केवल प्रसाद खाएं, बस ये नियम बनाइए। आज तक नहीं बनाया तो आज से बनाइए, कुछ नहीं खाएंगे अगर वो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है। और देखिए लाइफ, जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा आपके केवल एक नियम से। छोटा सा नियम है, जहां जाएंगे प्रसाद खाएंगे। कभी कभी अब मन में आने लगता है नहीं संभव नहीं है, ट्रैवलिंग के लिए समय संभव नहीं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं संभव नहीं, मित्रों के घर जाते हैं संभव नहीं। संभव सब है, ये केवल यहां पर सबसे पहले संभव होना है मन में, बाकी तो अपने आप संभव हो जाता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना आज के दिन आपसे है, वैसे तो प्रसाद की वर्णन आज के दिन करना नहीं चाहिए, निर्जल एकादशी है और हम इतना प्रसाद का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आज ही के दिन व्रत लिया जा सकता है कि केवल प्रसाद ग्रहण करेंगे और कुछ नहीं। तो ऐसे ये दूसरा द्वार है महाप्रसाद। तीसरा द्वार शिवपुराण के अनुसार जगन्नाथपुरी में मुक्ति प्राप्त करने का है धाम यात्रा। धाम यात्रा मतलब ऐसा कहा गया है कि अगर कोई जगन्नाथपुरी में प्रवेश करके बस स्पर्श मात्र कर देता है जगन्नाथपुरी के धाम को, मुक्ति का योग्य हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए हमें धाम यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी बहुत विशेष स्थान है। पुराणों में वर्णन है कि एक समय प्रलय हो गया, प्रलय मतलब सारा कुछ जलमग्न हो गया, और उस समय एक ऋषि थे मार्कंडे ऋषि, उनकी इच्छा हुई कि वो भगवान की माया शक्ति को देखना चाहते, तो भगवान ने उस प्रलय के जल में उनको बहुत समय तक घुमाया, पटका इधर से उधर, और फिर एक समय वो एक आइलैंड पर पहुंचे, द्वीप पर, वो था पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी। तो जब वो पहुंचे उन्होंने देखा, अरे ये कैसा द्वीप, बहुत सुंदर, ये कैसे बच गया, सब कुछ पानी में चला गया, तो उनको भगवान के दर्शन हुए। ये बहुत हम लोग जानते हैं, दो रूपों में दर्शन हुए, एक स्वयं भगवान और दूसरा एक छोटे से भगवान ने ही एक छोटे से बालक के रूप में उनको दर्शन दिए, जो एक स्तोत्र लिखा गया है गोविंद दामोदर माधवेति, उसमें ये बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, आप सब इसको कई बार सुन चुके होंगे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसास्मरामि। तो उन मुकुंद भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं जो एक छोटे से पत्ते के ऊपर प्रकट हुए, तो मार्कंडेय ऋषि ने वो देखा, और फिर मार्कंडेय ऋषि भगवान के मुख के अंदर चले गए, भगवान ने छोटे से बालक ने मुख खोला, अंदर चले गए, अंदर उन्होंने 14 भुवनों को देखा, सारे ब्रह्मांड को देखा, सब कुछ देखा, और फिर बाहर आ गए। जब बाहर आए उस समय उस क्षेत्र का महत्व उनको बताया गया कि जहां वो खड़े हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में थे जगन्नाथपुरी में, और फिर उसी समय उन्होंने प्रार्थना की कि वो वहीं रहना चाहते हैं। तो वहां पर उन्होंने भगवान विष्णु के चक्र से एक तीर्थ बनाया, चक्र तीर्थ कहते हैं जिसे, तो वो वहीं पर रहे काफी समय तक। तो इसलिए जगन्नाथपुरी का ये जो स्थान है ये बहुत महत्व, इसलिए धाम यात्रा हमें करनी चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। और रोज तो हम धाम यात्रा कर नहीं सकते, हो सकता है साल में एक बार दो बार चले जाएं, वैसे जितना हो सके जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पाए तो क्या करना चाहिए। प्रभुपाद ने समझाया है हमारे जितने भी मंदिर हैं इस्कॉन संस्था के, या भगवान के जितने भी प्रमाणिक मंदिर हैं, केवल इस्कॉन संस्था के नहीं, भगवान के जितने भी प्रमाणिक मंदिर हैं वो सब धाम है, तो उनमें हमें जाना चाहिए। तो हम जहां भी हैं, जिस अवस्था में हैं, तो वहीं बैठे बैठे हम लोग जो भी पास में प्रमाणिक मंदिर हो उसमें जाकर हम धाम यात्रा का लाभ ले सकते हैं। तो जैसे हमने आपसे कहा कि एक नियम बनाइए जीवन में प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, एक और नियम कि हर रोज मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करेंगे। हमने देखा है जिन भक्तों ने एक नियम ऐसा मनाया है जीवन में कि हर रोज मंगल आरती में आकर दर्शन करते हैं या अन्य समय, उनकी प्रगति बहुत तीव्र होती, बहुत जल्दी होती, भगवान से प्रेम बड़ा तीव्र हो जाता है, भक्तों से प्रेम हो जाता है, आसक्ति बढ़ जाती है कृष्ण में। तो इसलिए रोज ये धाम यात्रा करनी चाहिए, मंदिर रोज हमें जाना चाहिए। आप लोग आगे और सुनने के लिए तैयार हैं या फिर यहीं पर समाप्त करें? अगर आप सब तैयार हैं तो हाथ ऊपर कीजिए, तो हमें समझ में आएगा कि सब लोग तैयार हैं। ओके, आपके अंदर बड़ी शक्ति दी है भगवान ने। सुबह से सुन रहे हैं आप लोग, हमने तो सुना सोचा था कि 10 बजे के बस से सुन रहे हैं और अब जब हम आएंगे तो सारे सो रहे होंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और आशा है हमारे प्रवचन के बाद भी आप लोगों का श्रवण जारी रहेगा या कीर्तन जारी रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये तीसरा द्वार था धाम यात्रा। तो ये आप जरूर कीजिए जीवन में, एक प्रसाद लेना, दूसरा मंदिर रोज जाना, माथा टेक कराना ही चाहिए। माथा नहीं भी टेका तो भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए। और चौथा जो शिव पुराण में वर्णन किया गया है कि चौथा द्वार कौन सा है, तीन हो गए ना, कितने तीन हो गए, चौथा द्वार है संकीर्तन। देखिए प्रभुपाद ने हमको ये सारी चीजें दे दी हैं, हम लोगों को शिव पुराण पढ़ने की वैसे आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन संकीर्तन आंदोलन या संकीर्तन ये चौथा द्वार है। और ये कहीं भी किया जा सकता है, सड़क पे किया जा सकता है, ट्रेन में किया जा सकता है, बस में किया जा सकता है, प्लेन में शायद अलाउ नहीं करेंगे वो लोग, लेकिन जहां भी हो वहां संकीर्तन किया जा सकता है, कहीं भी किसी भी समय, क्योंकि वो संकीर्तन ही इस समय के लिए हमारा उद्धार कर सकता है। कलेर दोषो निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत। भागवत में कहा गया है कि ये कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन एक महान गुण है, क्या है, कीर्तना देव कृष्णस्य, कीर्तन एव कृष्णस्य, केवल कृष्ण का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कीर्तन हमें करना चाहिए ताकि हम भगवान को आकर्षित कर सकें, लोगों का जीवों का उद्धार कर सकें। देवता आकाश में रहकर स्वर्ग में रहकर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर हमारे जीवन में कुछ पुण्य बचे हैं तो हमें भारत भूमि में कलयुग में जन्म दीजिए ताकि हम आपका कीर्तन करके आपको प्राप्त कर सकें। देवताओं ने गुणगान किया और हम सबका जन्म हुआ भारत भूमि में कलयुग में, हमें संकीर्तन आंदोलन भी मिल गया, लेकिन हम गंभीर नहीं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए ये जो चीज चाहिए, तीसरा चौथा द्वार है संकीर्तन, इसको बड़े गंभीरता से हमें करना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे कहीं भी क्यों ना हो। आपने जुगनू देखा है, जुगनू रात को चमकता है, एक दो जुगनू कहीं चमके कुछ पता नहीं चलता, लेकिन लाखों करोड़ों जुगनू एक साथ आ जाएं और वो चमकें तो क्या स्थिति होगी पृथ्वी की। इसी तरह जब हम अकेले रहकर भगवान का कीर्तन करने का प्रयास करते हैं, वो जुगनू की तरह है, लेकिन जब हम किसी आंदोलन से जुड़ जाते हैं और उस आंदोलन से जुड़े भक्तों के साथ मिलकर करते हैं तो वो इस तरह है कि मानो फ्लड लाइट आ गई या सूर्य का प्रकाश आ गया। सूर्य के प्रकाश में ये जुगनू दिखाई भी नहीं देते। इसलिए हमें संकीर्तन आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लेना चाहिए। पांचवा द्वार है, अब जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग कुछ प्रश्नोत्तर भी करें अगर जिज्ञासा हो। अगर आप अभी से आपके प्रश्न है तो आप टाइप करके भेजना शुरू कर सकते हैं चैट में, ताकि प्रश्नों के उत्तर भी ले सकें, शायद कुछ आए भी हैं। तो पांचवा द्वार है वहां जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन करना। अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है, चाहे मंदिर में या रथ पर विराजमान जगन्नाथ जी के, फिर उसको जन्म लेना नहीं पड़ता, पुनर्जन्म न विद्यते, हो ही नहीं सकता। प्रथम जा वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, रस पर देख लिया भगवान को एक बार, जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त। तो दर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद्गीता में भागवतम में भगवान ने कहा है, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात्। ये द्वारों को भगवान ने पहले ही कह दिया क्या होना चाहिए, भगवान के श्रवण करो, दर्शन करो, श्रवणा दर्शना ध्यानात्मयी भावोनु कीर्तना भावपूर्ण कीर्तन करो, तो दर्शन होना चाहिए। और छठा गेट है, दर्शन कैसा होना चाहिए, आंखें खोलकर। कभी कभी भारत में हम लोगों को सिखाया जाता है कि मंदिर जाओ, भगवान के सामने खड़े हो, सर झुकाओ, आंख बंद करो, प्रार्थना करो और आ जाओ। एक समय एक मंदिर में एक पुजारी, हम थे, वो देख रहे थे कि पुजारी खड़े थे, बहुत भीड़ थी, तो 2 घंटे लाइन में खड़े होकर कोई आए और सामने आकर आंख बंद कर लिया उन्होंने। तो पुजारी इतना गुस्सा हो गया, उसने कहा कि 2 घंटा लाइन में खड़े होकर आए हो, भगवान के सामने आए हो, दर्शन करो, आंखें क्यों बंद कर रहे हो। हम दर्शन करने चाहिए भगवान के दर्शन, जिससे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। भगवान की जब हम सेवा करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो प्रेम बढ़ता है। एक भगवान जगन्नाथ जी के बड़े महान भक्त थे रघु, शायद आपने सुना होगा, रघुदास। वैसे ये रामचंद्र जी के भक्त थे। जब पुरी में रहते थे तो उन्होंने देखा, एक बार दर्शन के लिए गए तो देखा कि जगन्नाथ जी की जगह रामचंद्र जी हैं, राम लक्ष्मण सीता के दर्शन किए। तब से उन्होंने ये विश्वास कर लिया कि जगन्नाथ और राम में कोई अंतर नहीं है, मैं यहीं रहूंगा। जगन्नाथपुरी में रहते थे, भगवान की सेवा करते थे। एक बार उन्होंने हार बनाया जगन्नाथ जी के लिए, फूलों का बड़ा सुंदर हार बनाया, लेकिन उनके पास धागा नहीं था, तो धागे की जगह उन्होंने जो केले का पेड़ की छाल होती है सूखे हुए, उसको इस्तेमाल किया ताकि ये बना सकें। तो ऐसे उन्होंने बना के लाके पुजारियों को दिए, तो पुजारियों ने देखा, कह रहे हार तो अच्छा बना लेकिन ये क्या लगा दिया इसमें, ये सब धागा कहाँ है, ठीक से लगाना था। तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, वापस फेंक दे दिया कि नहीं लगाएंगे, आप भगवान को अर्पण नहीं करेंगे। तो बहुत दुखी हो गए और चले गए। उस दिन कोई खाया नहीं उन्होंने, कुछ नहीं पिया, रो रहे हैं। देखिए कितना प्रेम हो सकता है एक भक्त को, कि अगर उसकी सेवा स्वीकार नहीं हो रही, भगवान नहीं ले रहे हैं, तो उसको हृदय में आंसू, उसके आंसू टपकने लगते हैं कि क्या हो गया, मेरे जीवन का क्या लाभ है अगर मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा। तो वो चले गए। तो इधर पुजारियों ने रात को जब भगवान का श्रृंगार करना शुरू किया बाद में, तो भगवान को बड़े सुंदर फूलों से सजाना चाहते थे, बहुत सुंदर फूल लाए थे पुजारी। तो उन्होंने सजाना शुरू किया, तो जैसे ही भगवान के ऊपर फूल रखते थे, फूल नीचे गिर जाते थे। वो फिर से फूल रखते, वो फिर से फूल नीचे गिर रहे। वैसे कई बार हो गया। अब पुजारी घबरा गए, क्योंकि एकाध बार तो गलती से गिर सकता है, लेकिन जब भी रखा फूल नीचे गिर रहे हैं, जगन्नाथ जी ले ही नहीं रहे हैं। तो पुजारी घबरा गए कि कोई तो अपराध हुआ है। तो पुजारियों ने निर्णय किया कि हम भी उपवास करेंगे और हम यही सोएंगे जगन्नाथ जी के सामने, जब तक जगन्नाथ जी दर्शन देखकर हमें ये नहीं बताएंगे कि क्या अपराध हुआ। तो पुजारी वहीं सो गए और फिर स्वप्न में जगन्नाथ जी ने उन्हें दर्शन दिए। जगन्नाथ जी ने उनसे कहा कि मेरा भक्त इतना अच्छा हार लेकर आया था, तुमने मुझे क्यों नहीं चढ़ाया, इसलिए मुझे कोई फूल नहीं चाहिए। देखिए भगवान भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, क्यों नहीं दिया मुझे, अब कोई फूल नहीं दूंगा। और भगवान को मनाना बड़ा कठिन होता है, फिर प्रसाद भी खिलाइए तो हो सकता है प्रसाद से भी संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे हम जगन्नाथपुरी के प्रसाद की बात कर रहे थे, तो हमें एक बात स्मरण आई कि जब हम पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे, हमने मंदिर में प्रवेश किया था, तो हमें भी पहला दर्शन जगन्नाथ जी का प्रसाद के रूप में हुआ था। एक पंडित ने आकर जबरदस्ती हमारे मुंह में प्रसाद डाल दिया था। महाप्रसाद बड़ा प्रसिद्ध है वहां का। तो खैर दर्शन की बात हो रही थी, तो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, धामवास करना चाहिए हमें। अगला चीज, अगला द्वार जो है, तो हम रघु की बात कर रहे थे। तो कैसे भगवान ने बोला कि नहीं, मुझे मुझे वही हार चाहिए। तो सारे पुजारी भागे भागे गए रघु के पास, उसको उठाया, वो रो रहा था बैठे हुए। उसको कहा नहीं नहीं तुम्हारा हार दो, जगन्नाथ जी ने मंगाया है, ऐसे भक्त हैं। और एक समय वो बीमार हो गए रघु, बहुत बीमार, ऐसे बीमार कि वो उठ भी नहीं पा रहे हैं, बिस्तर पर ही वो शौच इत्यादि कर रहे हैं, बहुत बीमार हो गए। तो उस समय एक छोटा सा बालक आया और उनकी सेवा करने लगा। 3-4 दिन उसने ऐसी सेवा की, उनको साफ करना, उनको उनका बिस्तर साफ करना, बड़े जो कर नहीं सकता कोई, उसने वो सेवा की। और जब इनको थोड़ा सा, क्योंकि वो अपनी चेतना में नहीं थे, जब उनको थोड़ा सा होश आया तो उन्होंने देखा, फिर पहचान गए कि ये तो जगन्नाथ है। तो आंखों में आंसू भरकर वो बैठ गए, जगन्नाथ जी से पूछा, आपने क्या किया, क्यों मुझे अपराधी बनाया आपने, मेरी सेवा की आपने, और फिर आपको सेवा की क्या जरूरत थी, अरे आप मुझे वैसे ही ठीक कर देते, अगर आपको ठीक ही करना था तो आप वैसे ही ठीक कर देते, मैं बीमार था, आपने मेरी सेवा क्यों की इतने दिन मुझे ठीक करने के लिए। भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, भगवान ने कहा, भगवान ने एक पहला कहा कि क्योंकि मैं तुम्हारे कर्म काटना चाहता था इसलिए तुम्हें पूरा एकदम से ठीक नहीं किया, लेकिन दूसरी बात भगवान ने की, मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूँ और मैं उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहता था और इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा। देखिए ये प्रेम है भगवान का कि कैसे वो भक्त की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं, कोई भी सेवा। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि भगवान के भक्तों का दर्शन और भगवान का दर्शन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला द्वार है छठा द्वार, धामवास। धामवास मतलब जगन्नाथपुरी में वास करना। हमारा वास कहाँ है, गृहवास, हाउस वास, जो भी है, अपार्टमेंट वास, फ्लैट वास, लेकिन हमारा वास होना चाहिए ध्याम धाम में, जगन्नाथपुरी में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह हम धाम में जाकर उस आनंद की अनुभूति करें। दरअसल इस जगत में व्यक्ति अपने घर से इतना आसक्त होता है कि उसको छोड़ नहीं पाता है। संतान हो जाती तब नहीं छोड़ता, संतान की संतान हो जाती तब नहीं छोड़ता, जब तक जबरदस्ती मृत्यु उसको घसीट कर नहीं ले जाती छोड़ता नहीं। और कभी कभी तो आनंद लेता है, जैसे मान लीजिए कि कोई चार जनरेशन हो जाए, एक है दादा है, दादा के उसके पिता हैं, पिता का लड़का है, लड़के का भी लड़का हो गया, जब ये जनरेशन होती तो माना जाता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है, उसने तीन चार जनरेशन देख ली। क्या भाग्य है तीन चार जनरेशन देखकर, आसक्ति बड़ी केवल, भाग्य तो उसका है जो अपनी जनरेशन देखे ही नहीं या उसकी जनरेशन ही ना हो, मुक्त हो जाए वो भाग्यवान है। जनरेशन बढ़ाते रहना, जनरेशन बनाते रहना, एक के बाद एक, कोई भाग्य नहीं है। भाग्य तो वो है कि हमारा जन्म ही ना हो, जनरेशन आगे की तो भूल जाए। तो ऐसे हम लोग फंसे हुए हैं, लेकिन हमारा वास होना चाहिए कहाँ पर, धामवास, धाम में वास होना चाहिए हमारा, भगवान के भक्ति में हमारा वास होना चाहिए, अपने घर को धाम बनाना चाहिए। हमें घर को मंदिर बनाइए और मंदिर को घर, ये मंदिर धाम को लेकर आइए घर में। तो कैसे बना सकते हैं घर को धाम, घर को धाम बनाने के लिए एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहिए, एक भाव क्रिएट करना चाहिए जो जो आध्यात्मिक जगत का भाव है। केवल फोटो लगाने से, हाँ फोटो तो लगानी चाहिए, लेकिन केवल फोटो लगाने से धाम नहीं बनेगा, धाम वासियों का भाव चाहिए। और धाम वासियों का भाव क्या है, कृष्ण की सेवा शुद्ध हृदय से, शुद्ध प्रेम से, निरंतर, ये धाम वासियों का भाव है। तो ऐसे भाव में हमें सेवा करने का प्रयास करना है और अपने स्थान को धाम बनाना है। और अंतिम थोड़ा जल्दी चले गए, अंतिम जो द्वार है वो है मृत्यु। अगर कोई धाम में अपना देह छोड़ देता है, भगवान के दर्शन करते हुए देह छोड़ता है, तो फिर निश्चित वो मुक्त होता है, ऐसा पुराणों में वर्णन किया गया है। तो असली मृत्यु क्या है, मृत्यु का अर्थ क्या है, मृत्यु का अर्थ है शरीर को छोड़ना। लेकिन सही मृत्यु या ग्लोरियस डेथ क्या है, जिसका गुणगान किया जा सके, इसके उदाहरण है भीष्मदेव, हरिदास ठाकुर। भीष्मदेव बाणों की शैया पर हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन अब जब उनका समय आ गया, उन्होंने कहा अब जाना है, उन्होंने सारी क्रियाओं को बंद कर लिया और फिर भगवान को बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की भीष्मदेव ने। भगवान सामने खड़े हैं,
शायद प्रभु जी का नेट में कुछ प्रॉब्लम है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे यहाँ के फोन और सब थक गए हैं कि प्रभु जी कब बंद करेंगे। तो आप लोग तो घुटने पे आए नहीं, यहाँ जो फोन सामने लगे हुए हैं कैमराज वो घुटने पे आ गए कि प्रभु जी बस बहुत हो गया, 2.5 घंटा 1.5 घंटा हो गया, और कितना करेंगे। तो यहीं पे रुके अगर आप सबकी इच्छा हो तो।
नहीं प्रभु जी, कंटिन्यू कंटिन्यू।
अच्छा ठीक है, मायापुरवासी प्रभु का आदेश है कि थोड़ा और कर लें। लगता है मायापुरवासी प्रभु को कुछ काम है तो वो।
नहीं प्रभु जी, कोई काम नहीं है।
अच्छा अच्छा, ये लगा कि यहाँ पर लगाकर वो अपना काम कंप्लीट करने में और 2 घंटा बाकी, आप चालू रखो, खत्म मत करो। ठीक है, तो हम लोग द्वारों की चर्चा कर रहे थे। तो आखिरी द्वार था मृत्यु, 7वां द्वार। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी ग्लोरियस मृत्यु क्या होगी। भीष्म देव का हमने उदाहरण दिया कि भीष्म देव ने भगवान को देखते हुए अपने देह को त्यागा। हरिदास ठाकुर ने भगवान को, भक्तों को, हरिदास ठाकुर का तो इतना सुंदर वर्णन है। महाप्रभु आए सुबह सुबह, हरिदास ठाकुर लेटे हुए। महाप्रभु ने कहा क्या हुआ? बोले ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं? मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा मेरा जप नहीं हो रहा। महाप्रभु ने कहा बहुत हो गया। अरे नामाचार्य, तो इतना जप कर लिया, अब जरूरत नहीं है। कहा नहीं, मेरा प्रण है, पूरा तो करना है, लेकिन बहुत कष्ट हो रहा है। और फिर उन्होंने प्रार्थना की महाप्रभु से, कुछ दिन पहले की थी महाप्रभु से, कि मैं जानता हूं कि अब आप अपनी लीला को समाप्त करने वाले हैं बहुत जल्दी, मैं वो देखना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे पहले ही जाना है। महाप्रभु ने कहा कृष्ण तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो फिर जब ये समय आया उस दिन, तो महाप्रभु बहुत सारे भक्तों को लेकर आए, अकेले नहीं आए। महाप्रभु बहुत सारे भक्तों को लेकर आए। अब यह समय था जब हरिदास ठाकुर ने देखा, वो समझ गए कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। तो हरिदास ठाकुर ने जब देखा कि इतने भक्त और कीर्तन कर रहे, भक्तों को कुछ नहीं पता, वो कीर्तन कर रहे हैं और महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं वहां पर, तो हरिदास ठाकुर भी कीर्तन करते रहे। और जब उनको लगा कि बस अब समय हो गया, बहुत सुंदर वर्णन है, हरिदास ठाकुर ने वहां उपस्थित हरेक भक्त की चरण धूलि को अपने सर पर लगाया। देखिए, अगर किसी को देह छोड़ना है तो इस तरह से छोड़ना चाहिए, कामना ये करनी चाहिए कि अगर देह भी छूटे तो ऐसे छूटे, छूटेगा तो है ही, लेकिन कम से कम ऐसे छूटे। तो हरिदास ठाकुर ने सभी भक्तों की चरणों की धूल अपने सर पर लगाई और उसके बाद वो बैठ गए। कीर्तन चल रहा है, वो बैठ गए और उन्होंने अपना पूरा ध्यान चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद पर लगा दिया। और ऐसे महाप्रभु का नाम लेते हुए, कृष्ण का नाम लेते हुए, दर्शन करते हुए, महाप्रभु के भक्तों की चरण धूल अपने सर पर लगाकर फिर हरिदास ठाकुर ने अपने देह को छोड़ा। इसको कहते हैं जीवन की सफलता जो उन्होंने प्राप्त की। इसीलिए प्रभुपाद एक बंगाली कहावत कहा करते थे कि जीवन भर जो कुछ भी किया वो मृत्यु के समय पता चलता है। इसीलिए हम इंतजार नहीं करें मृत्यु का, आज से अभी से जीवन बदलें। दुनिया कहीं जाए कुछ करे, लेकिन हमें अपना जीवन बदलना है, हमें भक्त बनना है, हमें कृष्ण का स्मरण करना है, हमें मृत्यु के समय कृष्ण को देखते हुए अपना देह छोड़ना है। ये प्रण हमारा होना चाहिए। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया है। ये बहुत कठिन है पार करना, इसको मैं निश्चित पार कर जाऊंगा। कैसे? भक्तों की और कृष्ण की कृपा से। तो जगन्नाथ जी के धाम में अगर ऐसी मृत्यु भी हो तो भी वो बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। और ऐसे कई लीलाएं हैं जगन्नाथ जी ने जो अपने भक्तों के साथ की, केवल प्रेम दर्शाने के लिए कि क्या प्रेम है उनका, जगन्नाथ जी का। जैसे एक बहुत सुंदर लीला हमें बहुत बार अच्छे स्मरण आती है, बंधु मोहंती की। हम कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन ये लीला इतनी सुंदर है कि हमें लगता है कि इसको बारंबार हम लोगों को सुन लेना चाहिए कि कैसे हम ये बंधु मोहंती की लीला को सुने। हमने पहली बार सुनी थी, हमने कई बार सुना उसको, इतना अच्छा लगा हमें, और इसीलिए हम बारंबार सुनाते हैं। हमें पता है उदयपुर में सुना चुके होंगे, लेकिन एक बार और जगन्नाथ जी की लीला सुनाना चाहते बंधु मोहंती के साथ। एक गरीब व्यक्ति है, जगन्नाथपुरी से काफी दूर रह रहा है, लेकिन उसने जगन्नाथ जी को अपना मित्र माना, अपना बंधु माना। वो कहते थे कि वो मेरा बंधु है। गरीब व्यक्ति थे, भिक्षा मांगते थे, ब्राह्मण थे, किसी तरह रहते थे, घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन जगन्नाथ जी के विग्रह रखे हुए थे, और जो भी लाते थे पहले उनको खिलाते थे फिर खाते थे। कहते थे मेरा बंधु है, ये बंधु है। उनका नाम था मोहंती, लेकिन भगवान को बंधु कहते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी के साथ बहुत झगड़ा हुआ, जो कि होता ही है, आप लोगों को तो अनुभव है। पत्नी के साथ बहुत झगड़ा हुआ, पत्नी ने कहा बच्चों को खाने के लिए नहीं, हमें खाने के लिए नहीं है, और तुम जो देखो जब देखो इनका गुणगान करते रहते हो, तो 56 भोग खाते हैं बैठकर वहां पर जगन्नाथपुरी में, और हम यहाँ पर हमें 2 निवाला नहीं मिलता है। बहुत झगड़ा किया, और फिर उसने कहा कि अगर ये सही में तुम्हारे मित्र हैं तो जाओ उनसे मांग कर लाओ, चलो हम वहां चले और उनके साथ में रहेंगे जैसे ऐश्वर्य में वो रहते हैं। तो इसको इतना विश्वास था, ने कहा देखो ये मेरा मित्र है, ये जो चाहे कर सकता है। पत्नी ने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे ये। ने कहा चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तैयार हो गए, केवल विश्वास था, इसीलिए वो गए, इसलिए नहीं थे बंधु अपना मोहंती जी, इसलिए उनको कुछ खाने को नहीं था, तो वो विश्वास था, अपनी पत्नी पर विश्वास बढ़ाना चाहते थे पत्नी का। तो अपने पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए। पहुंचते पहुंचते रात हो गई, रात को जब पहुंचे आए तो मंदिर के दरवाजे बस बंद हो गए थे, दर्शन नहीं। तो उसने कहा रे रे, तो पत्नी ने कहा देख लो तुम्हारा कैसा मित्र है, तुम कहते हो बंधु है, हम आए इतनी दूर से, उसने दरवाजे बंद कर दिए, ये कोई मित्र है? मान लीजिए हम आपके घर में आए इतनी दूर से और आप दरवाजे बंद कर दो तो कैसा लगेगा हमें? उन्होंने कहा दरवाजे बंद कर दिए कैसा मित्र है? मोहंती ने कहा चिंता नहीं करो, मेरा अच्छा मित्र है, बंधु है मेरा। तो उन्होंने फिर भी नहीं माने, खैर अब क्या करे, रात का समय वहीं बाहर वहीं सो गए। अब सोए थे वहां पर, सोने की जगह तो थी नहीं, किसी तरह एडजस्ट करके सो रहे हैं वहां पर। तो अब ऐसा हुआ कि मंदिर के द्वार खुले और भगवान को भोग लग चुका था। तो भोग लगने के बाद एक बड़ी सी थाली लिए हुए, सोने की थाली, इतनी बड़ी मतलब पकड़ने के लिए भी बहुत बड़ी थी, सोने की थाली लेकर एक पंडा चिल्लाता हुआ आ रहा है, बंधु मोहंती कहाँ है? अरे मोहंती ने सुना, बोले मुझे यहाँ मुझे तो कोई जानता नहीं है, मुझे नहीं किसी और को बुला रहे होंगे। वो फिर से सो गया, फिर से चिल्लाए बंधु मोहंती कहाँ है? उसने बंधु सुना, उसने कहा बंधु तो मेरा एक ही है, मेरा ही बंधु है, तो ये मुझे बुला रहे होंगे। तो उन्होंने ऐसे हाथ दिखा रहे, अरे यहाँ है। तो वो पुजारी आया और उसने इतनी बड़ी प्लेट, सोने की प्लेट में पूरा भगवान का भोग, 56 भोग, और कहा ये भगवान ने, ये जगन्नाथ जी ने आपके लिए भेजा है। इतना खुश हो गया कि देखो, अपनी पत्नी से कहा, देखा मैंने कहा था मेरा बंधु है वो, चलो जल्दी जल्दी खाएंगे। तो बहुत सारा था और कई दिनों से खाया नहीं था, तो सब खा गए, इतना खा गए, प्लेट भी अच्छे से साफ कर दी। और फिर वो प्लेट देखी, उन्होंने सोने की है, अब रात का समय है, बाहर है, कैसे कहाँ इसकी रक्षा करें, तो उन्होंने अपने बच्चों को सुला दिया उस प्लेट पर, इतनी बड़ी प्लेट थी कि बच्चे उस पर सो गए, बच्चों को सुला दिया कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो जब सुबह का समय हुआ, अब ये बहुत रात हो गई थी, तो लोग ज्यादा देर सो गए, अब सुबह का समय हुआ, पुजारी गए मंदिर में तो देखा कि भगवान की प्लेट गायब है वहां से, सोने की प्लेट इतनी बड़ी गायब हो गई, हंगामा हो गया, सिक्योरिटी को बुलाया गया, इधर उधर सबको ढूंढो कहाँ है भगवान की प्लेट गायब हुई, किसने चोरी की, तो सब ढूंढने लगे इधर उधर, इधर कहीं नहीं, ढूंढते ढूंढते इधर उधर ढूंढ रहे, सिक्योरिटी वाले आए, देखा ये यहाँ पड़ी हुई है, ये व्यक्ति के पास, इसने चुराई है, तो तुरंत सैनिक आए उसको पकड़ लिया। अब पत्नी और गुस्से में, पत्नी ने कहा देख लो तुम्हारा मित्र कैसा है, कल हम लोग आए, एक तो दरवाजे बंद कर दिए उसने, सड़क पर खड़ा कर दिया हम लोगों को, और अब इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई, ठीक है गरीबी तो थी लेकिन जेल में जाना ये तो पहली बार हो रहा है, चोरी का इल्जाम पहली बार लग रहा है, इससे अच्छे तो हम अपने गांव में थे। इसने कहा नहीं नहीं चिंता नहीं करो, मित्र है मेरा, चलो जेल में ले गए उनको कि इसने चोरी की है, बता रहे थे कि दरअसल नहीं ऐसा हुआ ऐसा हुआ। पंडा आया तो राजा के पास ले गए, तो उसने कहा देखिए मैं आपको सच बता रहा हूं, एक पंडे ने आकर दिया था मुझे, मैं नहीं गया था। तो राजा को लगा कि ठीक है अगर तुम सच भी बोल रहे हो तो मैं जितने पंडे हैं जितने पुजारी हैं सबको बुलाता हूँ, तुम पहचानो कि कौन सा है, अगर तुम पहचान लोगे वो पुजारी मान जाएगा तो छोड़ देंगे। ठीक है सबको बुलाया, एक भी पुजारी नहीं उसमें से। तो राजा ने कहा बताओ, कहा नहीं इनमें से तो कोई नहीं लाया था। राजा ने कहा इनके अलावा कोई पुजारी नहीं है, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमको किसी पुजारी ने ला के दिया। कहा नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। राजा ने कहा फिर बताओ, सारे आ गए हैं एक भी कमी नहीं है। तो पहचान तो नहीं पाया, राजा ने फिर जेल में डाल दिया झूठ बोल। तो राजा जब रात को सोया तो राजा को सपना आया, राजा ने देखा जगन्नाथ जी का मंदिर खुल रहा है, राजा को बड़ा आनंद आने लगा, मंदिर खुल रहा है और राजा ने देखा कि जगन्नाथ जी अपने आसन से खड़े हो गए, और आसन से खड़े हो गए उन्होंने प्लेट उठाई, और वो जिस पंडे की बात जैसा बता रहा था कि काला सा पंडा था ये, वो बिल्कुल वैसे ही पंडा, और चिल्ला रहे बंधु महंती कहाँ हो, देखो तुम्हारे लिए जगन्नाथ जी ने प्रसाद भेजा। राजा ने जब ये सपने में देखा तो बस उसी समय उठा भागा, खुद भाग कर गया जहां बंदी बनाया था उनको, खोला चरण पकड़ लिए उनके, और फिर उनको बहुत सा मान सम्मान दिया, उनको वहां रहने का स्थान दिया, और ऐसी व्यवस्था की कि जीवन भर कभी उनको किसी चीज की कमी नहीं हुई, और सही दृष्टि में वो बंधु निकले, बंधु महंती, भगवान बंधु हैं। अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे मित्रता के विषय में, तो बंधु मित्र सखा और सुहृद ये अलग अलग शब्द हैं संस्कृत में जो प्रेम को दर्शाते हैं। प्रेम जैसे जैसे बढ़ता है ये शब्द बढ़ रहे हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि बंधु का अर्थ साधारणता लिया जाता है एक ऑफिशियल फ्रेंड औपचारिक रूप से, मित्र एक सोशल सामाजिक फ्रेंड सामाजिक मित्र को माना जाता है, लेकिन सखा तो बहुत निकट है, और सुहृद जो हमारी तरह सोचता है, जो हमारे हमारे लिए हमारे हमारे भले के लिए हमारी तरह और अपने आप को पूर्ण देने के लिए तैयार है, वो सुहृद है, और ऐसे हैं केवल जगन्नाथ जी जो पूरा देते हैं अपने आप को। तो ऐसे जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। तो जो मृत्यु की भी बात हुई कि हमें धाम में छोड़ना चाहिए, लेकिन मूल बात कृष्ण की चेतना में हमें, जैसे हरिदास ठाकुर ने छोड़ा, हमें कृष्ण की चेतना में उसको छोड़ना चाहिए, और जितना हो सके सतत भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान से वो प्रसन्न होते हैं। एक समय जयदेव गोस्वामी, इन्होंने गीत गोविंद लिखा है, जयदेव गोस्वामी के साथ भी भगवान जगन्नाथ ने बहुत लीलाएं की, इसीलिए जयदेव गोस्वामी को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, महाप्रभु भी इनके भजनों को सुना करते थे। तो जयदेव गोस्वामी ने जो गीत गोविंद लिखा बहुत प्रसिद्ध है, आपने आप में से किसी ने गीत गोविंद सुना है? उड़ीसा के जो लोग होंगे वो तो गीत गोविंद ऐसे ही गाते हैं, उसका एक भाग हम लोग गाते हैं कभी कभी, श्वेत कमला कुछ मंडल है धृत कुंडल है, तो गीत गोविंद उन्होंने लिखा, तो ऐसा हुआ कि उनकी एक बार इच्छा हुई कि मैं गीत गोविंद कपड़े पर लिखकर वो कपड़ा भगवान जगन्नाथ जी को पहनाना चाहता हूँ, पूरा गीत गोविंद जो मेरी रचना है वो एक कपड़े में लिखेंगे। तो उन्होंने बुनकरों को बुलाया, बुनकर अब कपड़ा बुन रहे हैं और उस पर लिखने वाले हैं, वो लिखना मतलब उस समय हाथ से वो पेंट से नहीं बुनकर लिखना है एम्ब्रॉयडरी। तो उन्होंने कहा कि हम लिखेंगे लेकिन शर्त है कि आप गाते रहिए, आप बोलते रहिए उसको गाइए और हम लिखते जाएंगे, आप बंद कर देंगे तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो जयदेव गोस्वामी ने कहा ठीक है। जयदेव गोस्वामी अपनी रचनाएं गाने लगे गीत गोविंद, तो उन्होंने गाया गाया गाते गाते वो भावविभोर हो गए। भक्त हैं जब भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं तो भावविभोर हो जाते हैं, तो भावविभोर हो गए। तो उस समय वो अपनी चेतना खो बैठे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो यहाँ इनका लिखना बंद हो गया कपड़े पर, अभी इंतजार कर रहे हैं क्या होगा। तभी देखा एक और व्यक्ति आया, उसने कहा चिंता मत करो तुम बनाते रहो। उन्होंने कहा कैसे बनाए जब तक ये बोलेंगे नहीं। बोले मैं बोलता हूँ ना, तो आप कौन है? मैं इनका भाई हूँ। अच्छा ठीक है आप बोलिए। तो उन्होंने बोला, तो वो बोलते गए ये लिखते गए। फिर थोड़े समय बाद जब ये जयदेव गोस्वामी होश में आने लगे, उनके भाई चले गए। जयदेव गोस्वामी होश में आए, उठे देखा, अरे अरे उन्होंने कहा कि क्षमा करना मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए हो गया था कहीं, तो आप शायद लिख नहीं पाए होंगे। अब उन्होंने कहा नहीं हमने तो लिख दिया। अरे आपने कैसे लिखा? मैंने गाया ही नहीं तो लिखा कैसे आपने? आपके भाई आकर गाए के गए ना। जयदेव गोस्वामी ने कहा मेरा तो कोई भाई नहीं है, और क्या गा के गए दिखाओ। तो देखा तो एकदम सही था वो लाइन जो लिखी थी। जयदेव गोस्वामी ने कहा कि मेरे और मेरी पत्नी के अलावा कोई जानता ही नहीं है इसको, ये कहा कैसे किसी ने? तब स्मरण हुआ कि एक ही हो सकते हैं जगन्नाथ, खुद आकर लिख कर गए। जयदेव गोस्वामी का द्वारा रचित गीत गोविंद इतना प्रिय है जगन्नाथ जी को, आज भी गाया जाता है जगन्नाथ जी के सामने। तो जब पहली बार जयदेव गोस्वामी ने बनाया ये गीत गोविंद, तो अब उनको कहा गया कि जगन्नाथ जी के सामने सारे बड़े बड़े पंडित बैठे, उन्होंने कहा कि लाओ अपनी रचना सुनाओ जगन्नाथ जी के सामने। तो जगन्नाथ जी के सामने जो गाना शुरू किया, उन्होंने बहुत सुंदर रचना है ये, उसमें धीरे धीरे आते आते एक स्थान पे आते हैं जहां पर उन्होंने लिखा है जयदेव गोस्वामी ने कि कृष्ण इतने कृतज्ञ हो गए राधा रानी के प्रति, इतने भावुक हो गए हैं कि कृष्ण ने उनके चरणों को अपने हाथ में ले लिया। जयदेव गोस्वामी ने लिखा गीत गोविंद। तो जब उस लाइन पर आए वो, जयदेव गोस्वामी ने सोचा कि सारे विद्वान पंडित बैठे, इनके सामने मैं ऐसा बोलूंगा ये मुझे कहेंगे मूर्ख व्यक्ति है, ये कैसे कह सकता है कि राधा रानी के राधा रानी भक्त हैं और उनके चरणों को कृष्ण ने हाथ में ले लिया, ये गलत लिखा है इसने। तो उस डर से उन्होंने वो लाइन छोड़ दी, गीत गोविंद गा रहे हैं उसमें वो एक दो लाइन छोड़ दी, आगे चल दी, आगे गाया वो गाया ही नहीं। तो जैसे ही उन्होंने वो छोड़ा, जगन्नाथ जी के मंदिर में हो रहा था, तो जगन्नाथ जी वहीं से ऑल्टर से चिल्लाने लगे, ये धोखा दे रहा है, ये धोखा दे रहा है। सारे लोग हैरान हो गए, क्या हुआ जगन्नाथ जी क्यों चिल्ला रहे, ये क्या हुआ, क्या धोखा दे रहे हो? सबने उसकी ओर देखा, क्या धोखा दे रहे हो? कुछ धोखा नहीं दे रहा जगन्नाथ जी, मैं धोखा दे रहा है इसको, कहो वो दो लाइन कहे जो छोड़ दिए इसने, क्यों छोड़ी उसने। तो सबने कहा क्यों भाई तुमने कोई दो लाइन छोड़ी है? उसने कहा हाँ, अरे गाओ जगन्नाथ जी सुनना चाहते हैं। तो फिर जयदेव गोस्वामी को गाने पड़ी। तो उसके बाद जयदेव गोस्वामी वाराणसी गए, वाराणसी में बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान, और उनके सामने उनको कहा गया गीत गोविंद सुनाओ, और ये लोग तो मतलब भक्त भी नहीं, कुछ भक्त हैं कुछ ऐसे विद्वान हैं। तो उन्होंने गीत गोविंद गाना शुरू किया और फिर से उसी लाइन पर आए, और उन्होंने सोचा कि वहां तो जगन्नाथ जी थे, वहां तो भक्त थे, ये तो सब विद्वान प्रकांड पंडित हैं, इनके सामने नहीं कहूंगा मैं। तो फिर से वो दो लाइन छोड़ दी और आगे बढ़ गए। तो जैसे ही बड़े, एक ब्रह्मचारी बैठे थे वहां पर, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, ये धोखा दे रहा है। अरे जयदेव गोस्वामी ने कहा ये क्या, कौन हो तुम? बोले मैं उस समय वहां पर उपस्थित था जब आप वहां पर गा रहे थे जगन्नाथपुरी में, मैं उपस्थित था तब भी आपने छोड़ दिया था, आपको गाना पड़ेगा। वो जय गीत गोविंद का भाग गाना पड़ा, और गाने के बाद जब सब हो गया तो जाते जाते जयदेव गोस्वामी उस ब्रह्मचारी से पूछा हो कौन तुम? उन्होंने कहा जगन्नाथ। जगन्नाथ जी अपने अपने इस गुणगान को सुनने में बड़ा आनंद लेते हैं, इसलिए जितना हो सके, जितनी क्षमता हो, जितनी हमारी योग्यता हो, हमें बारंबार भगवान के नाम को गाते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो जगन्नाथ जी की बहुत लीलाएं हैं और बहुत सी आप सुन चुके होंगे बहुत जगन्नाथ जी के विषय में, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कहकर अब समाप्त करेंगे कि जगन्नाथ जी का जो रूप है ये प्रेम का स्वरूप है। जगन्नाथ जी इंतजार कर रहे हैं हमारा, प्रेम प्रकट कर रहे हैं। जैसे कई गानों में कहा जाता है कि किसी के लिए किसी की राह देखते देखते आंखें पत्थर हो गईं, ऐसा कुछ शायद पुराने जमाने में कहा जाता होगा। तो जगन्नाथ जी का ऐसा भाव है कि हम सबकी राह देखते देखते कि कब आएगा ये, उनकी आंखें ऐसे पत्थर के समान हो गई, मतलब बंदी नहीं होती। और हम लोग इतने कृतज्ञ हैं कि हमने इंतजार करने के लिए छोड़ दिया है कृष्ण को। करते रहिए इंतजार, हम आएंगे जब हमारी इच्छा होगी। तो आप सबसे प्रार्थना है कृष्ण को इंतजार मत कराइए, ये ही जन्म बस, इसी जन्म में वापस जाइए उनके पास। कोई और इच्छा मत रखिए, कोई और कामना मत रखिए, मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, मुझे बहुत धन मिल जाए, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हो, मुझे सुंदर स्त्री मिल जाए, मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, सब होगा जगन्नाथ जी चाहेंगे तो। आपको तो जगन्नाथ जी को पकड़ना है, बाकी सब जगन्नाथ जी संभालेंगे। अर्जुन ने यही किया, भगवद गीता में हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में जीतना संभव ही नहीं था। परीक्षित महाराज कहते हैं कि उस महासागर में, महाभारत का जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र नाम के महासागर में, बड़ी बड़ी तिमिंगला मछलियां थी, और ये मेरे दादा अर्जुन ये तो छोटी सी मछली है, इसको तो ऐसे ही खा जाते, लेकिन बचे रहे क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को पकड़ कर रखा था। और इसका प्रमाण था जब युद्ध समाप्त हो गया, साधारणता पहले कृष्ण उतरा करते थे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम पहले उतरो। अर्जुन ने कहा रे क्यों, आप उतरिए। बोले नहीं तुम उतरो। अर्जुन पहले उतरे और फिर कृष्ण उतरे, और जैसे ही कृष्ण उतरे वो रथ चूर चूर हो गया। कृष्ण ने बताया कि इतने अस्त्र लगे हैं इस पर, ये तो कब का टूट जाता, कब का खत्म हो जाता, वो तो कृष्ण की उपस्थिति थी तो बचा रहा। तो अर्जुन ने बुद्धिमानी की उस समय जब वो गए, कृष्ण ने कहा एक तरफ मैं हूं एक तरफ मेरी सेना है, इसको चुनना है। अर्जुन ने कहा आपको चुनना। भगवान ने कहा मूर्ख हो अर्जुन, मैं तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, बस मैं केवल हूं, कुछ नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा आप चाहिए। और दुर्योधन ने कहा ठीक है मैं सेना ले लेता हूं, लेकिन बड़ा प्रसन्न हुआ हृदय में, कह रहे अर्जुन कितना मूर्ख है, सारी सेना छोड़कर एक व्यक्ति को ले लिया जो युद्ध भी नहीं करेगा। लेकिन वही एक निर्णय अर्जुन के लिए विजय का कारण बना, और कोई कारण नहीं है अर्जुन के विजय का, हो ही नहीं सकता, एक ही कारण कृष्ण की उपस्थिति। और हमें भी ऐसा चुनाव दिया गया कि हम कृष्ण को पकड़ें या उनकी शक्ति, बहिरंगा शक्ति, एक तरफ कृष्ण दूसरी तरफ उनकी सेना, एक तरफ कृष्ण है दूसरी तरफ बहिरंगा शक्ति है, हमें चुनाव दिया गया। और हमने बड़ी प्रसन्नता से दुर्योधन की तरह शक्ति को चुना, ये सोचकर युद्ध इससे जीत जाऊंगा, संघर्ष इससे जीत जाऊंगा। लेकिन अभी भी समय है, अर्जुन दुर्योधन के पास समय नहीं था, हमारे पास समय है इस निर्णय को बदलने का, और आज ये निर्णय बदलना चाहिए। ये निर्णय बदलना चाहिए कि हमने गलती हो गई कि भगवान जब आपको चुनना था और शक्ति को, हमने शक्ति को चुन लिया, हमने आपकी सेना को चुन लिया ये सोचकर कि मेरी रक्षा करेगी। आत्मसैन्यस्य सतस्वपि तेषां प्रमत्त निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। हमने आपकी सेना को चुन लिया, क्षमा कर दीजिए, चुनना तो हमें आपको है। तो भगवान को पकड़िए, भगवान को चुनिए, भगवान को वोट दीजिए और फिर देखिए कि भगवान कैसे हमारे जीवन में ये बदलाव लाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने भगवान को पकड़ लिया वो व्यक्ति सदैव सुखी है। और क्यों सुखी है? तो वो अर्जुन की तरह सदैव संग करेगा, शुद्धता में रहेगा और साथ ही साथ जीवन की सच्ची विजय, इस जगत को पार करना वो कर पाए। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि जगन्नाथ जी को इंतजार मत कराइए। बहुत समय से दोनों हाथ हिलाए हुए आपका इंतजार कर रहे हैं, बस बहुत हुआ, अब अपना जीवन कृष्ण समर्पित जीवन जिए। अब अपना जीवन कृष्ण को दीजिए। जितने भी आज तक पाप किए हैं वो पाप का बंडल बनाकर कृष्ण को दे दीजिए। कहिए नहीं कुछ केवल सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जय जगदीश हरे, दे दीजिए और फिर देखिए कि हमारे जीवन में कितना बदलाव आएगा, जिसके द्वारा जो सच्चा सुख का मार्ग है उसका अनुभव हमें हो सकेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3 बज गए हैं।